हरे कृष्णा। तो गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में आप पधारे हुए सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मना रहे गोवर्धन पूजा महामहोत्सव। गिरिराज गोवर्धन की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये बड़ा विशेष महामहोत्सव है। कृष्ण की जो झांकियां बड़ी प्रसिद्ध है, कृष्ण के चित्र या कृष्ण लीलाओं में, तो जैसे ही हम कृष्ण लीला की बात करते हैं तो कुछ विशेष चित्र एकदम तुरंत हमारी दृष्टि के सामने आ जाते हैं, है कि नहीं। जैसे कृष्ण यानी माखन चोर, कृष्ण यानी रासलीला करने वाले कृष्ण, वैसे ही गोवर्धन लीला तुरंत गिरिवरधारी ये जो कृष्ण है इनका चित्र जो है तुरंत सामने आता है। तो बड़ी प्रसिद्ध लीला है, बड़ा विशेष त्यौहार है ये वैष्णवों के लिए। और इसमें प्रारंभ में ही मैं उपस्थित सभी वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि इस उत्कृष्ट विषय पर कुछ आपके लिए और मेरे लिए प्रेरक कुछ शब्द जो है वो कह पाऊँ। खास करके प्रारंभ में ही श्रील प्रभुपाद को वंदन करते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही हमें ये सारे त्यौहार, ये सारा वैष्णव जो पंथ है और उसके अंतर्गत जो भी कुछ विशेष महोत्सव है ये सब प्राप्त हुए हैं। वैसे देखा जाए तो नहीं तो श्रील प्रभुपाद के परिचय के पहले भारत में होने के नाते हमने गोवर्धन लीला आदि सुनी तो रहती है, लेकिन उसका ज्यादा समझ नहीं रहता है किसके पास भी, है कि नहीं। कुछ आप में से विशेष लोग होंगे जो शायद वैष्णव परिवार में आते होंगे और लीला की, भगवान की लीला की बहुत अच्छी समझ भी थी, तत्व भी जानते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। तो ये प्रभुपाद की ही कृपा है। आज भी हम प्रारंभ सुबह के कक्षा में सुन रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी का भी विशेष स्नेह था, एकदम अंतिम दिनों में भी गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते थे जबकि पूरा पूरा उनका देह जो है वो जीर्ण हो गया था। तो ऐसे उस गोवर्धन के प्रति आसक्ति और वृंदावन के प्रति आसक्ति होते हुए भी उसे त्याग कर प्रभुपाद जी जो है पूरे विश्व में भ्रमण किए ताकि हम लोग वृंदावन आ पाए, ताकि हम लोग जो है गोवर्धन जो है उसको, उसके दर्शन करने के लिए चले जाए। तो ये प्रभुपाद की बहुत कृपा है। नहीं तो फिर गोवर्धन पर्वत इसका दर्शन करना, ये मतलब मैं अपने जीवन में तो समझता हूँ ये कभी ये विचार भी नहीं था मन में। अगर पर्वतों की ही बात करें तो कुछ और पर्वत देखने की इच्छा थी, है कि नहीं, परदेश के कुछ पर्वत हो या फिर हमारे ही भारत के भी कुछ अन्य पर्वत देखने की इच्छा थी, गोवर्धन की देखने की, उसके दर्शन की इच्छा नहीं थी। हालांकि इस भौतिक जन्म में, इस जन्म में मेरे पिता का नाम गोवर्धन है। तो फिर जब हमारे गांव में पहली बार कुछ हरे कृष्ण भक्त आए तो फिर कृष्ण और गीता इसका वितरण कर रहे थे, तो भक्तों का स्वभाव बड़ा अनोखा होता है, पूछते हैं पहले आपका नाम क्या है, है कि नहीं, किसी भी व्यक्ति को, और फिर नाम से कुछ जोड़ देते हैं। तो मेरे पिताजी को उनकी फैक्ट्री में इस व्यक्ति ने पूछा आपका नाम क्या है, तो बोले गोवर्धन। अरे वाह, बोले गोवर्धन नाम है आपका, आपको पता है कि गोवर्धन की क्या विशेषता है। हाँ, उन्होंने कहा वो भगवान ने उठाया था उसको, पर्वत है करके वगैरह। तो फिर ऐसे इस वार्तालाप से उन्होंने एकदम पकड़ लिया उनको, बोले रुको आपको मैं बताता हूँ पूरी कथा कैसे है गोवर्धन की। तो फिर कुछ संक्षिप्त में कथा बताई और बोले ये पूरा जो कथा है ये इस ग्रंथ में है, कृष्ण ग्रंथ में ऐसे। और कृष्ण को तत्वता जानने के लिए एक दूसरा ग्रंथ है गीता, तो ऐसे करके दोनों बुक दे दिए। और फिर ये ग्रंथ लेके पिताजी घर पे आए और तब मैं दसवीं कक्षा में था वेकेशन में, और मुझे कहे कि ये दो ग्रंथ दिए, ग्रंथ दिए मतलब बोले जबरदस्ती थमा दिए एक ने, तो ये देखो बड़े अच्छे ग्रंथ है कृष्ण के ऊपर ऐसे। तो फिर उन ग्रंथों को मैंने भी वेकेशन में पढ़ा, तो पहली बार वो कोई श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ के साथ परिचय हुआ। और फिर मैं जब इंजीनियरिंग करने के लिए पुणे में आया, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था पुणे के, तो वहाँ पे भी एक भक्त मिले मुझे और उन्होंने वही स्टाइल में एकदम टिपिकल बोले आपका नाम क्या है। तो फिर महाराष्ट्र में नाम पूछा तो पूरा नाम बताने की आदत है, तो मैंने कहा कि हाँ मेरा नाम ये है और उसमें पिता का भी नाम बोल दिया। बोले अरे अच्छा आपका पिता का नाम गोवर्धन है। और फिर उस गोवर्धन को लेके इन्होंने भी मुझे भी पकड़ लिया इस प्रकार से। तो अभी जब से वो पकड़े हैं अभी तक यहीं पे हूँ और यहीं पे रहने की इच्छा भी करता हूँ। तो ये बहुत विशेष है एक्चुअली कि गोवर्धन के बारे में थोड़ा बहुत सुना वगैरह था, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों के द्वारा उस पूरे जीवन शैली को, उस पूरे वैष्णव संप्रदाय को हमें प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत प्रभुपाद जी की कृपा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो गोवर्धन का विशेष महामहोत्सव है, इस महोत्सव में हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कुछ, मैं मुझे याद है कि पिछले समय भी गोवर्धन पूजा के दिन मैंने कुछ चर्चा की थी लीलाओं की। और उसमें खास करके पिछली बार गोवर्धन पूजा का जो डिटेल्स था, किस प्रकार से गोवर्धन पूजा जो है वो मनाई गई थी, इसके ऊपर चर्चा की थी मैंने। आप में से कितने लोगों को याद है पिछली बार गोवर्धन पूजा में ये सब चर्चा हुई थी? आप में से कुछ लोग वहाँ पे थे और उन्होंने सुना भी था। तो ये जो गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में चर्चा की थी, जिसमें पूरा गोवर्धन पूजा और उसको किस प्रकार से गोवर्धन ने स्वीकार किया, ये आदि चर्चा की थी। तो आज के सत्र में मैं खास करके विशेष वहाँ से आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से गोवर्धन के नीचे, जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया 7 दिन और 7 रात, तो गोवर्धन के नीचे क्या महोत्सव चल रहा था, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे किस प्रकार से भगवान ने इंद्र को शिक्षा दी और इंद्र के गर्व का हरण किया। तो अगर आप देखोगे ये लीला बड़ी प्रसिद्ध है, तो ये लीला इस कार्तिक महीने में हुई। खास करके जो कार्तिक अमावस्या है वो दीपावली का दिन है, तो कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली के त्योहार के पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी अमावस्या के बाद पहला दिन जो है, उस प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा हुई। फिर उसके पश्चात जो भ्रातृ द्वितीया होता है या भैया दूज कहते हैं, वह कृष्ण ने अपनी भगिनियों के साथ, मतलब जो उपनंदा आदि की लड़कियां थी, पुत्रियां थी, वो कृष्ण की भगिनियां हैं, उनके साथ कृष्ण ने वो जो भ्रातृ द्वितीया है उस त्योहार को मनाया। और फिर तृतीया के दिन जो है, ये इंद्र जो है उसका भगवान के ऊपर और सारे ब्रजवासियों के ऊपर कोप हुआ, और इंद्र ने ये सारे सामवर्तक मेघ वगैरह तृतीया के दिन भेजे। तो तृतीया के दिन से लेके तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, तो तृतीया से लेके नवमी तक भगवान ने इस पर्वत को धारण किया, गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात पूरा धारण किया। फिर दशमी के दिन भगवान जो है इस पर्वत को अपनी जगह पे रख के सारे ब्रजवासियों के साथ वापिस चले गए व्रज में, गोवर्धन पर्वत से निकल के। और एकादशी के दिन भगवान का ये अभिषेक हुआ इंद्र के द्वारा, जो सुरभि आदि आके इंद्र के द्वारा अभिषेक जो हुआ वो। तो इस प्रकार से टाइमलाइन है पूरी, वो जो है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेके एकादशी तक भगवान जो है ये सारी लीलाएं करते हैं इस प्रकार से। और अगर हम इस लीला के अंतर्गत गोवर्धन के नीचे क्या हुआ या क्या चल रहा था, तो इसका विवरण भागवत में केवल एक श्लोक में है। सिर्फ एक श्लोक जो है इसकी चर्चा करता है। पूरी पास्ट टाइम, पूरी लीला जो है भागवत में 3 अध्यायों में बोली गई है, 24, 25 और 27। लेकिन उसमें जो पर्वत उठाने के बाद क्या हुआ नीचे, या पर्वत उठाना, ये चीज को केवल एक श्लोक में बोला है भागवत। तो इसके भी अपने कारण है, क्योंकि आप जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के पास ज्यादा समय नहीं था, सारी लीलाएं बोलना चाहते थे, द्वारका लीला, व्रज लीला, मथुरा लीला, और दशम स्कंद यानी ऑलरेडी 4th दिन चल रहा था। और कभी कभी बीच में सुखदेव अगर कहीं एक्सटेसी में चले गए तो फिर कब उठेंगे गारंटी नहीं है, इस प्रकार का। तो लीलाओं को उन्होंने निश्चित रूप से बोला तो है, लेकिन पूरी विस्तृत रूप से नहीं बोला है, जितना संभव था तब उतने उस प्रकार से इन लीलाओं को बोला है। तो केवल एक श्लोक जो है भागवत का, वो बोलता है, सुतृढ़ व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा तैर व्रजवासी भी वीक्षमानो दधा वद्रिम सप्ताहम नाचलत पदात, ऐसे कहा है। तो वहां पे क्या बोलता है भागवतम, बोलता है कि पूरी भूख प्यास को भुलाकर, पूरे इस दुख को भुलाकर, सुख की अपेक्षा को भुलाकर भगवान ने पूरे व्रजवासियों को सुख प्रदान करते हुए वह गोवर्धन पर्वत धारण किया, और एक 7 दिन के लिए पूरा, 7 दिन और 7 रात के लिए, और एक पग भी हिले नहीं, ऐसा भागवतम कह रहा है। ये श्लोक है भागवत में, बस इतना ही वर्णन है वहां पे क्या हुआ गोवर्धन के नीचे। लेकिन इसको लेकर श्रील जीव गोस्वामी और कवि कर्णपुर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि आचार्यों ने इतना लिखा है इस एक श्लोक को लेके कि उसको बोलने के लिए 10 घंटा लग जाएगा, केवल केवल ये बोलने के लिए इसका कि क्या क्या हुआ उधर नीचे, क्या वार्तालाप चल रहे हैं वगैरह, 10 घंटा कम से कम लग जाएगा उसको। और इसमें मैं कह नहीं रहा कि कुछ सीखे जीवनोपयोगी कुछ सीखे निकालनी है वगैरह तो उसके कारण बहुत विस्तृत हो गया, नहीं, मैं केवल नरेशन बोल रहा हूं, केवल वर्णन वहां पे क्या हो रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, क्या हुआ, कैसे, सब कुछ चीजें थी, ये केवल वर्णन 10 घंटा लग जाएगा, इतना लिखा हुआ है। तो ये हमारे आचार्यों की विशेषता है। अरे कौन से आचार्य है इस जगत में ऐसे जिन्होंने, आप सोचिए, कृष्ण लीला के ऊपर ऐसा विस्तृत चर्चा जो है वो की है। ये हमारे संप्रदाय की एक बहुत विशेष यू नो विरासत है। और फिर दूसरा भी जो इसमें एपिसोड है, भाग है, जो कि इंद्र का गर्व हरण है और फिर इंद्र की प्रार्थनाएं, फिर कृष्ण का उत्तर और फिर इंद्र के द्वारा, सुरभि के द्वारा कृष्ण का अभिषेक, तो इसको भी 3 श्लोकों में बोला है भागवतम ने। अगर अभिषेक की बात करें तो केवल एक अध्याय है पूरा कृष्ण का अभिषेक, लेकिन उसमें अभिषेक 3 श्लोकों में बात हुआ है, बाकी फिर सारी सेटिंग बात हो रही है। इस 3 श्लोक के अभिषेक को बोलने के लिए भी कम से कम 2 घंटा लग जाएगा, इसमें क्या क्या हुआ वगैरह, इतना कुछ विस्तृत जो है श्रील जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कवि कर्णपुर वर्णन करते। तो खैर 10 और 3 13 घंटा हम तो लोग तो नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है, हमारे पास इतना समय भी नहीं। तो इसका थोड़ा सा कुछ एक संक्षिप्त झांकी जो है हम देखने का प्रयास करेंगे, और जिससे कुछ हमारे जीवन में भी उसका कुछ रिलेवेंस संबंध जो है उसकी भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो फिर इस लीला का गुणगान करते हुए हमारे जो बहुत महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी, जिनके अनुग है हम सब, जिनके ही चिन्ह पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, ऐसे वो रसिक प्रवर, रसिकाचार्य, रसाचार्य, कवि कुल मुकुटमणि, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी को बहुत सारे पदवियां है एकदम। तो ऐसे श्रील रूप गोस्वामी ने एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक लिखा है और बड़ा अद्भुत है ये श्लोक, उनके स्तवमाला नाम के ग्रंथ में ये श्लोक लिखा गया है। तो यहाँ पे वो श्लोक लिखा हुआ है इस बोर्ड पर, तो आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, इसको आप मेरे साथ मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। विशेषता है ये इस श्लोक की कि इसमें केवल 2 ही अक्षर यूज हुए हैं, ध और र। पूरा श्लोक ध और र ये यूज करके ही लिखा गया है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे इस श्लोक के ऊपर। तो आप बोलिए सब, धरे धरा धर धरम, धारा धर धूरा रुधि, धीर धीरा राधा धी, रोधम राधा धुरंधरम, धरे धरा धर धरम, धारा धर धूरा रुधि, धीर धीरा राधा धी, रोधम राधा धुरंधरम, धरे धरा धर धरम, धारा धर धुरा रुधि, धीर धीरा राधा धी, रोधम राधा धुरंधरम। विशेष है, अद्भुत। तो इसको चित्र कवित्वानी कहा है, चित्र कवित्व संस्कृत में, मतलब इसको कहते हैं अद्भुत, जो अद्भुत काव्य है ऐसा। तो ये जो है श्रील रूप गोस्वामी के रचित कुछ ग्रंथ है, कुछ काव्य है, जैसे स्तवमाला नाम का ये ग्रंथ है उसमें ये चित्र कवित्व लिखे गए हैं। तो इसको कहते हैं द्वि अक्षरानी, 2 अक्षर से ही पूरा श्लोक लिख दिया। इससे भी महाभयंकर है जिसमें एक अक्षरानी, केवल 1 अक्षर यूज करके पूरा श्लोक लिख दिया है। न निनु नानो ननो नूनम, नानु नो नानो नुनि, नाने नानाम निनुन्नेनम, नानो नाना ननो ननु। आप बोलोगे ये श्लोक है, कुछ कुछ गा रहे नाना वगैरह, ये श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है, ठीक है, और इसका बड़ा सुंदर अर्थ भी है। श्लोक मतलब अर्थपूर्ण भी होना चाहिए, है कि नहीं तो कुछ लिख दिया बस कुछ अर्थ नहीं है, नाना नूनू कर रहा है, ऐसे नहीं, इतना सुंदर अर्थ है, पूरा कृष्ण की लीला का अर्थ है इसमें। तो इसी प्रकार से र और स यूज करके और एक श्लोक लिख दिया द्विअक्षरानी, रसासार सुसारोरु रसुरारी ससारस समसारा सिरसौ रासे सूर्य रमसु ससारस ऐसे। तो एक्चुअली इसे कविता कहते हैं। ये जो है चित्र कवित्व सुन के, एक्चुअली ये कवित्व सुन के अद्भुत रस प्रकट हो जाएगा। क्या है ये, किस प्रकार से लिखा गया है। श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि शिल रूप गोस्वामी ऐसे कवि है कि उनकी कविता समझने के लिए मुझे थोड़ी बुद्धि चाहिए, वो प्रदान करें मुझे। ये कौन कह रहा है, मैं नहीं, श्री बलदेव विद्याभूषण जो इतने महान आचार्य है। वो कहते हैं दुष्करानी कवित्वानी यह करोति महाबल श्री रूपो कवि भूपो में सदेयाद बुद्धि संपदम। ऐसे दुष्कर कवित्व लिखते हैं वो, महाबल कवि है, कवि भूप, कवियों के भी भूप है पूरे, बस उसको समझने के लिए सदेयाद बुद्धि संपदम, थोड़ी सी बुद्धि भी मिल जाए मुझे समझने के लिए तो मेरा जीवन धन्य है। ऐसे बलदेव विद्याभूषण लिखते। तो ऐसे श्लोक की कमेंट्री हमारा सौभाग्य है कि लिखी है श्रील रूप गोस्वामी ने, नहीं तो हम लोग क्या समझते थे उसको देख के, है कि नहीं। श्रील रामानंद राय भी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि काव्य किसे कहते हैं, कवि कौन है, किम काव्येन कवेस्तस्य किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यच्छिरः। वो कहते हैं काव्य किसको कहते हैं, अरे किम काव्य न कवेस्तस्य, अरे उस कवि के काव्य से क्या होगा, किम कांडे न धनुष्मत, या फिर वो धनुर्धानी का वो बाण कैसा जो परस्य हृदय लग्नम किसी अन्य व्यक्ति पे वो जो छोड़ा जा रहा है काव्य या बाण हृदय में घुस के न घूर्णयति यच्छिरः उसके सिर को न चकरा दे। तो ऐसे कवि का वो कविता क्या और ऐसे वो बाण क्या धनुर्धर का, उसने हृदय में तो घुसना ही चाहिए, उसने सिर को चकरा देना चाहिए। ये कविता का विशेष है, ऐसे बताते हैं श्रील रामानंद राय। तो रस छंद अलंकार जो है इसकी प्रचुरता जो है वो कवि में होती है, ये काव्य कहा जाता है। तो कलयुग में क्या निरस छंद विहीन और अलंकार विहीन ऐसा हो जाता है सब एकदम। मुक्त छंद बोलते हैं वो भग्न छंद होता है, मतलब छंद जो है उसमें कुछ होता नहीं। अर्थात मैं बात कर रहा हूं ऐसे कवियों की, न कि जो भगवान के गुणगान के लिए लिख रहे हैं। भगवान के गुणगान में तो कोई भी कविता जो है वो बड़ी सुंदर है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, ऐसा वाग विसर्ग मतलब वाणी की ऐसी सृष्टि जो कि यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, जिसमें हर श्लोक में कुछ तो गलती है, ऐसी भी जनताघ विप्लो लोगों के जीवन में पूरा वो जो है क्रांति ला देगा, उनके अघों को पूरा पाप को पूरा खत्म कर देगा। तो वो तो भगवान के बारे में लिखने वालों की महिमा है, तो उसमें तो कैसे भी शब्द हो क्योंकि उसकी इच्छा भगवान के गुणगान की है तो वो तो बहुत विशेष है। लेकिन खास करके भगवान का गुणगान भी हो और इस प्रकार का रस छंद अलंकार हो तो वो तो फिर क्या कहना, वो तो फिर काव्य है, वो सही काव्य है इस प्रकार से। तो जैसे हमारे आचार्य हुए, तो इस प्रकार का चित्र कवित्व जो है श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसे 12 श्लोक लिखे हैं, और वैसे ही कवि कर्णपुर ने लिखे हैं, बड़े प्रसिद्ध आचार्य है, और वैसे ही बलदेव विद्याभूषण, ये तीनों ने हमारे संप्रदाय में ऐसे चित्र कवित्व अद्भुत काव्य जो है वो लिखे हुए हैं। तो इस श्लोक की व्याख्या में अगर आप देखोगे, धरे धरा धर धरम, इस श्लोक को चयन करने का मेरा कारण यह था कि यह श्लोक गोवर्धन लीला के बारे में बोल रहा है। धरे धरा धर धरम बता रहा है कि धरे, धर कहते हैं पर्वत को, तो पर्वत के नीचे धरे धरा धर धरम, धरा धर कहते हैं पर्वत को, धरा धर, धर भी पर्वत हुआ, धरा धर भी पर्वत हुआ, जो पृथ्वी को धारण करता है। पृथ्वी को कैसे धारण करते हैं पर्वत, तो पर्वत पृथ्वी को धारण इसलिए करते हैं ऐसे कहा है कि पृथ्वी की जो धारणा शक्ति है वो पर्वतों के कारण है, क्योंकि पर्वत जो है पृथ्वी का जो करोजन आदि होना इसको रोक देते हैं और साथ ही साथ पृथ्वी के भाग की रक्षा करते हैं। तो इसलिए हालांकि पृथ्वी कोई कहेगा कि पर्वत को धारण कर रहा है करती है, लेकिन धरा धर का अर्थ है कि एक्चुअली पर्वतों के कारण पृथ्वी धारित रहती है, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भूभाग है वो बना रहता है बहुत अच्छे से। तो ऐसे पर्वत को धरम, धरा धर धरम, ऐसे पर्वत को जिन्होंने उठा लिया, ऐसे उनको धरा धर धरम, ये भगवान की बात हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की। कैसा पर्वत, धारा धर धा रारुधि, धारा धर धू रारुधि, ऐसा पर्वत कि जो धाराधर, ये कहते हैं मेघों को, जो मेघों के इस बोझ को सह रहा था, ऐसे उस पर्वत के नीचे जो है भगवान को क्या, ऐसे उस पर्वत के नीचे भगवान को क्या, धीर धी ही, ये राधा रानी के लिए कहा है। श्रीमती राधा रानी जो है धीर धी मानी जाती है, बहुत बुद्धिमान है श्रीमती राधा रानी, बहुत चतुर है। वाक चातुर्य में श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण के एकदम समान है, उनके वाक चातुर्य के संवाद बड़े प्रसिद्ध है। तो ऐसी धीर धी, ऐसे एकदम धीर, बहुत बुद्धिमान बुद्धि वाली श्रीमती राधा ने आराधना की, कृष्ण की आराधना की, आराध अधिरोधम। उस कृष्ण के बारे में और दो विशेषण आते, अधिरोधम, जिन्होंने इस रोधम यानी इस दुख को, इस डिस्ट्रेस, इस पीड़ा को, ब्रजवासियों की पीड़ा को खत्म कर दिया। अधिरोधम धुरंधरम, वो जो पर्वत है वो उठाने वाले श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी ने उनकी आराधना की या उनको भजा, उनको श्रीमती राधा रानी ने उनकी पूजा की। तो ऐसा ये श्लोक कह रहा है कि इस गोवर्धन के पर्वत के नीचे इस प्रकार से गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों के समस्त क्लेशों को या पीड़ा को खत्म करने वाले उस भगवान श्री कृष्ण की आराधना आराध श्रीमती राधा रानी ने की। तो ऐसा ये विशेष अर्थ है। तो किस प्रकार से ये आराधना की, इसकी हम चर्चा करते हैं। श्रीमती राधा रानी क्यों, उस 7 दिन और 7 रातों में ब्रजवासी आदि सब ने किस प्रकार से श्री कृष्ण की आराधना की, जबकि कृष्ण केवल एक जगह पे वो पर्वत धारण किए हुए थे। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। उस गिरिगर्त के अंदर, गिरिगर्त यानी ये जो गोवर्धन था, जब वो उठाया गया तो उसके नीचे एक गड्ढा था और गोवर्धन के ऊपर से मानो जैसे टनल के जैसे नीचे सब उतर गए और उस गड्ढे में सारे के सारे जो ब्रजवासी थे, गौवें थी, गोप थे, वो बैठे हुए थे और वहां पे ये सारा जो आनंद का महोत्सव है वो चल रहा था। तो इसके ऊपर पिछली बार भी मैंने चर्चा की थी कि कैसे गोवर्धन के ऊपर भी मणि थे, अलग 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 मणि, क्योंकि गोवर्धन पर्वत है, पर्वत जो है वो मणियों की खान रहता है। तो पूरे ऊपर जो है मणि लगे हुए थे, मानिए जैसे यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है, तो वैसे गोवर्धन के नीचे जो कि अभी उठाया गया है तो सारे मणि लगे हुए थे एकदम, उसके कारण पूरा प्रकाशित था गोवर्धन के नीचे, अंधेरा नहीं था। और साथ ही साथ फ्लोर भी, फ्लोर जो था मतलब जो जमीन थी, सतल था, उसके ऊपर भी सारे मणि जो है बिछाए हुए थे। तो नीचे से भी लाइट थी, ऊपर से भी और नीचे से भी। लोग तो कुछ पीओपी वगैरह करके थोड़ा बहुत कुछ ऊपर लाइट लगा लेते हैं, है कि नहीं, लेकिन अभी तक मैंने ऐसे नीचे से लाइट देखा नहीं है कभी, बहुत कम बार दिखाई पड़ता है कोई रॉक शो आदि में वगैरह। तो वैसे इस प्रकार ये गोवर्धन था कि नीचे से भी सारे मणि वगैरह प्रकाशित हो रहे थे और उससे इतना सुंदर प्रकाश जो है वहां पे फैला हुआ था और उसमें सारे व्रजवासी, गौवें, गोपगण, बछड़े, ब्राह्मण, सब सारे व्रजवासी आके बैठे हुए थे। तो ये पूरे मणियों की शोभा में बीच में श्री कृष्ण जैसे मानो ऐसे लग रहे थे पूरे एक बहुत बड़े नीले इंद्रनील मणि की तरह लग रहे थे, ब्लू सफायर, क्योंकि पूरे इस मानिए पूरे यहाँ पे मणि है, नीचे मणि है और बीच में कृष्ण उसको धारण करे हुए खड़े हुए हैं। तो ऐसा लग रहा था वो जैसे बीच में एक पिलर जो है पूरा उसको सपोर्ट कर रहा है इंद्रनील मणि की तरह, एकदम बड़े ऐसे सुंदर लग रहे थे। और ये दृश्य में कृष्ण के दोनों ओर, दोनों भुजाओं के मतलब दोनों भुजाओं के बाजू में वहां पे माता रोहिणी और माता यशोदा थी दोनों ओर, और वो देख रही थी कि इसने उठाया कैसे है ये पर्वत जो है वो, बड़ा विश्वास नहीं हो रहा था माता यशोदा और रोहिणी को भी। तो देख रही थी और माता यशोदा तो पूरा 7 दिन 7 रात उसकी वही चिंता कि इसने उठाया कैसे है, इसको कितना परिश्रम हो रहा है, इसको कितनी पीड़ा हो रही है, इस प्रकार से। तो अपने आंचल से भगवान का मुख पोछ रही थी और सोच रही थी क्या मेरे लाला को ये करना पड़ रहा है, इस प्रकार से पूरा गोवर्धन उठा रहे हैं और कृष्ण एकदम बोले थे निश्चिंत रहो, कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ खेल है बस, इस प्रकार से। तो ऐसा पूरा आनंद का महोत्सव चल रहा था वहां पे उस स्थिति में। और उस आनंद के महोत्सव में हम लोग देखते हैं कि कवि कर्णपुर लिखते हैं कि ऊपर जितनी बारिश हो रही थी सांवर्तक मेघों से, उससे कई गुणा उससे अगणित परिमाण से ज्यादा बारिश नीचे कृष्ण रूपी मेघ के आनंद के वर्षाओं की हो रही थी। इतना आनंद, इतना भगवान जो अपना माधुरी प्रकट कर रहे थे, सौंदर्य प्रकट कर रहे थे, एकदम पूरे सबके ऊपर दृष्टिपात कर रहे थे स्मित करते हुए, और इतना कृष्ण को प्रसन्नता हो रही थी कि किस प्रकार से वो सारे अपने ब्रजवासियों के साथ एक साथ है और उनकी इस विषम घड़ी में किस प्रकार से रक्षा कर रहे। तो फिर ऐसी उस स्थिति में ये स्टेज है, ठीक है, ये सेटिंग है, इसमें फिर एंट्री होती है और एंट्री होती है कृष्ण के लीलाओं में जो सबसे हास्य विनोद के सम्राट है ऐसे व्यक्ति के, और वो है मधुमंगल। एकदम मधुमंगल का ये जो विनोद है वो बड़ा प्रसिद्ध है। मधुमंगल मतलब हास्य रस के, एकदम इतना हंसाते हैं जो भी बोलते हैं उससे, और कृष्ण को इतना पूरी लीला में मधुमंगल आते हैं तो एकदम चहल पहल हो जाती है, पूरे हास्य रस के पूरे वहां पे हम लोग देखते हैं शॉवर्स, पूरी धाराएं जो है वहां पे दिखाई पड़ती। तो फिर ये मधुमंगल तो बड़े प्रसिद्ध है, खास करके श्रीमती राधा रानी के घर पे एक बार कृष्ण को निमंत्रण दिया गया था प्रसाद के लिए या भोग के लिए। तो जब इस प्रकार के निमंत्रण उत्सव कृष्ण को आए, पहली बार कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के घर पे वृषभानु महाराज के प्रसाद में उनको आमंत्रण निमंत्रण जो है दिया गया था भोज का, और फिर उसमें लेके जाते हुए कृष्ण ने कहा कि मेरे कुछ इनको भी, मेरे सखाओं को भी लेके जाना पड़ेगा करके ऐसे। तो ठीक है, कुछ चुनिंदा सखा जो थे उसमें, तो निमंत्रण भोजन का है तो मधुमंगल तो पहला होना ही चाहिए, है कि नहीं? जहां भोजन है वहां पे मधुमंगल होगा ही होगा निश्चित। तो वहां पे श्रीमती राधा ने, वो तो बड़ी विशेष लीला है, कवि कर्णपुर इसका बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन बड़ा प्रसिद्ध है वो एपिसोड। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, वहां पे वो आइटम्स देख के, इतने सारे श्रीमती राधा रानी ने आइटम बनाए थे कृष्ण के लिए, यशोदा अवाक रह गई कि अरे ये क्या है, ये कितना बनाया है करके ऐसे, और मधुमंगल तो पागल हो गया एकदम सारे आइटम देख के वगैरह, ऐसे पूरा नाचने लगा ऐसे वगैरह। तो कृष्ण बोला रे नीचे बैठ, ये क्या पूरे ये गेस्ट लोगों के सामने इज्जत निकाल रहा है हमारी, तुम्हें खाने को नहीं मिला क्या? बोला ऐसा खाने को कभी नहीं मिला, तुम अरे तुम देखो क्या बनाया, तुमने देखा क्या, देखो क्या बनाया कर ऐसे। तो कृष्ण बोला अरे ठीक है, हाँ बनाते हैं, हमारे इधर भी बनाते हैं ऐसे। नहीं नहीं नहीं, बोला नहीं बनाते हैं। नंद महाराज को पूछा, नंद महाराज को बोला बनाते हैं क्या ऐसे, और नंद महाराज बोले क्या बोलूं क्योंकि पीछे यशोदा खड़ी थी। तो नंद महाराज बोले कभी कभी बनाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि यशोदा देख रही है, अच्छा हमारे यहाँ पे कुछ बनता ही नहीं इस प्रकार से। तो ये मधुमंगल ऐसा बड़ा प्रसिद्ध है उसके लिए एकदम। तो पूरा सा उछलते उछलते उसने सारे वहां पे उन व्यंजनों का आस्वादन किया करके, तो हास्य रस का एकदम मधुमंगल जो है बहुत इस प्रकार से हास्य रस की सृष्टि करते हैं, हास्य रस को लेके आते। तो फिर जैसे ये सब बैठे थे सारे गोपगण और ये सब, और ये महोत्सव चल रहा था, तो एकदम से खड़ा हो गया मधुमंगल और बोला ए ब्रजवासियों बताओ, ये जो गोवर्धन धारण किया है कृष्ण ने कैसे किया है? तो ब्रजवासी बोले क्या प्रश्न पूछ रहा है, कैसे किया है, दिख नहीं रहा क्या? उंगली पे धारण किया है, अपने उंगली से धारण किया है, अपनी शक्ति से धारण किया है, वो तो मुझे भी दिख रहा है वो बोले, लेकिन कैसे धारण किया है, मतलब किसकी शक्ति से धारण किया? तो ब्रजवासी बोले एक्चुअली ये कृष्ण बड़ा विशेष है, इसके ऊपर भगवान विष्णु की हमेशा कृपा रहती है। तो ये क्योंकि ब्रजवासी वैसे ही है ना, ब्रजवासी कुछ भी कीजिए कृष्ण वो कभी ऐश्वर्य भाव को प्राप्त ही नहीं होते, उनको लगता है कि इसके ऊपर विष्णु की बहुत कृपा है, इसके कारण ये ऐसा कुछ करता रहता है, जैसे गर्गाचार्य ने भी बोला था। तो बोले विष्णु की कृपा है इसके ऊपर, इसलिए तो इसने गोवर्धन धारण किया है। तो मधुमंगल बोला अरे हट, क्या तुम लोग समझते नहीं, ये सब मेरे ब्रह्म तेज से हो रहा है, अरे तुम लोगों को पता नहीं मधुमंगल, अरे मैं सांदीपनि का पुत्र हूं, मेरा ब्रह्म तेज आप लोगों ने अब तक समझा ही नहीं, ये ब्रह्म तेज के कारण ही तो ये गोवर्धन जो है कृष्ण धारण किए है ऐसे। तो उन्होंने कहा अभी आपको बताता हूं, कृष्ण को बोले कृष्ण आप थोड़े श्रांत लग रहे हो, मतलब थोड़े थके हुए लग रहे हो, चाहो तो मैं संभाल लूंगा ये, आप जो है ना इसको छोड़ दो करके ऐसे, मैं इसको संभाल लूंगा। तो फिर कृष्ण बोले अच्छा तुम कैसे संभालोगे? तो अपनी यष्टि निकाली लगुट, और उस यष्टि के सुवर्ण अग्रभाग जो था वो सुवर्ण का था, बोले ये सुवर्ण भाग पे मैं धारण करूंगा, आप तो उंगली के ऊपर धारण कर रहे हैं, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं, मैं यष्टि से कर लूंगा करके ऐसा। तो ऐसे बोले तो फिर कृष्ण कुछ आगे कहना ही चाहते थे, तुरंत यशोदा माता आ गई। तो जहां मधुमंगल आता है वहां पे यशोदा माता तुरंत जो है उसको रोकने के लिए रहती है। तो बोलती है, अरे तू वाचाल कितना उद्धत है, तू कितना उद्धट है, ये किस प्रकार की भाषा कर रहा है, और तुम्हारे संघ के कारण ये कन्हैया भी उद्धट हो गया है। उसने कहा क्या जरूरत थी इसको उस इंद्र के साथ में इस प्रकार से शत्रुता करने की, हो रही थी ना इंद्र की पूजा तो होने देते थे, अलग से गोवर्धन की पूजा करते थे। तो बोला नहीं, गोवर्धन की होगी लेकिन इंद्र की नहीं होगी। तो देखो ये शत्रुता ये उद्धटता सब तुम्हारे कारण हुई है, ये मधुमंगल ये असत संग त्यागा थे ये वैष्णव आचार, तो ये असत संग तुम्हारा त्याग करना चाहिए इससे इस प्रकार से। तो इसलिए उसने कहा कृष्ण को कि ए, उसका सुनो मत, वो जो धारण किया है तुमने गोवर्धन, वो उसके ब्रह्म तेज, क्या उसका ब्रह्म तेज पता है हम लोगों को, वो बोले उसको मत दो करके ऐसे। और फिर कृष्ण की भुजाओं को स्पर्श करके, क्योंकि यशोदा का वात्सल्य तुरंत आ जाता है, तुरंत थोड़े से समय के लिए कुछ बोल भी थे लेकिन तुरंत आ जाता है वात्सल्य। तो कृष्ण की भुजाओं को स्पर्श करके कहने लगे कि अरे ये कितना कोमल है इसका अंग, एकदम अभिनव नवनीत की तरह है, नए नए माखन की तरह है, और इसको इतनी ये गोवर्धन का भार धारण करना पड़ रहा है ऐसे। तो गोवर्धन को प्रार्थना करने लगी यशोदा माता जो है कि हे गोवर्धन, आप जो है कृपया, अगर मैंने कुछ व्रत किए है, अगर मैंने कुछ भी पूर्त इष्ट नियम व्रत किए है या फिर कुछ भी भक्ति की है, तो आप कृपया हल्के हो जाइए ताकि ये जो मेरा लाला है उसको ज्यादा परिश्रम न करने पड़े। कृपया आप इतना ये कीजिए करके, मेरे ऊपर इतना उपकार कीजिए ऐसे, जिससे कि कृष्ण को परिश्रम न हो ऐसे। तो फिर इंद्र के साथ शत्रुता, क्योंकि ये मधुमंगल ने सुना तो बोला अरे ये क्या कह रहे हैं मैया, आप इंद्र के साथ इसने इस प्रकार का व्यवहार करके हम सबका उपकार ही किया है, देखो ये कितना इस प्रकार से यहाँ पे खड़ा है और कितना अपूर्व सौंदर्य प्रकट कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं इस माधुरी को, इस मधुरता को कृष्ण की, ऐसा अप्रतिम सौंदर्य हमने कभी तक देखा नहीं था, कृष्ण का विशेष सौंदर्य यहाँ पे प्रकट कर रहे। तो एक्चुअली इंद्र ने हम पे उपकार किया है कि अपकार किया है, पूरा ये जो इस प्रकार का यहाँ पे चित्र प्रदर्शित करके, इस प्रकार का कृष्ण का माधुरी जो है प्रकट करके। तो फिर तो यशोदा माता बहुत गुस्सा हो गई। यशोदा माता बोली यहाँ मेरे कृष्ण के ऊपर इतना बड़ा बोझ है और तुझे माधुरी की पड़ी है, तुझे मधुरता की पड़ी है, अरे तुम्हारा भाड़ जाए मधुरता, तुम्हारा भाड़ में जाए, बोली इससे कुछ लेना देना नहीं है मुझे। लेकिन उसको देखो कितना परेशानी हो रहा है, पूरा उसके चेहरे पे एकदम उसकी अलकावली जो बाल वगैरह है वो पसीने से लथपथ हो रहे हैं एकदम ऐसे। यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा पसीना आ रहा है मुझे, थोड़ा सा गर्म है तो अगर चैलेंज कर सकते हैं काफी यहाँ। तो पसीना जो है आ रहा है इस प्रकार से, एकदम पूरी तरह से कृष्ण जो है श्रांत दिख रहे, और तुमको क्या पड़ा है देखो, बोले सब कृष्ण थक रहे हैं, उनके हाथ पैर जो है वो लाल पड़ रहे हैं, तो इतनी पीड़ा में है कृष्ण। तो जब कृष्ण ने ये सुना तो कृष्ण ने कहा माता ऐसा नहीं है, ये जो उठाना गोवर्धन ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आपको सही बात बताऊं मैं तो एक्चुअली केवल पोज दे के खड़ा हूं। कृष्ण ने कहा ये गोवर्धन तो अपने आप ऊपर उड़ रहा है, अपने आप वो उछल रहा है ऐसे करके। तो यशोदा माता ने कहा अच्छा, पहले तो मधु कुछ बोलता था, अभी तो ये भी बात कर रहा है, तो अपने आप उड़ रहा है गोवर्धन, हवा में उड़ रहा है ऐसे, तो थोड़ा आकाश में उड़ा के दिखा उसको। कहा तुम्हारी उंगली के ऊपर एक सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं जा रहा, कभी छोड़ नहीं रहा, और तुम क्या कह रहे हो कि हवा में अपने आप उड़ रहा है करके ऐसे, थोड़ा तुम आकाश में उड़ाओ तब मानो कि ये जो है अपने आप उड़ रहा है करके। तो फिर कृष्ण बोले अभी क्या करने का, ये ऐसे बोल रही है ऐसे। तो फिर मधुमंगल बोला फिर से कि यशोदा माता आप जानिए ये सब मेरे मंत्र और ब्राह्मणत्व से हो रहा है, आप इस चीज पे विश्वास क्यों नहीं करती, आपको मेरे मंत्रों का और ब्राह्मणत्व का कुछ प्रदर्शन करूं, मैं कुछ प्रदर्शन करके दिखाऊं। तो फिर यशोदा बोली बस कर, अभी बहुत हो गया तुम्हारा, तेरे जैसा प्रजल्प करने वाला मैंने देखा नहीं कभी, यहाँ पे इतना बैठ के प्रजल्प कर रहे हो, इतना प्रजल्प कर रहे हो इस प्रकार से। और फिर जब इस प्रकार से यशोदा डांटने लगी मधुमंगल को, तो नंद महाराज जो है तो फिर आके बोले अरे यशोदा को बोले क्यों उसको डांट रही हो, एक्चुअली हास परिहास कर रहा है वो यहाँ पे, तो इससे सब खुश ही है, देखो कृष्ण भी बड़े खुश है, और बीच बीच में ऐसे कृष्ण को भी पेपटॉक की जरूरत है इस प्रकार से, कृष्ण को भी कोई प्रोत्साहन देने वाला, इस प्रकार से हास परिहास करके कृष्ण को प्रसन्न करने वाला चाहिए। तो देखो कृष्ण कितने प्रसन्न है इस प्रकार से, तो इसलिए ये अच्छी बात ही है। तो ऐसा सब हास परिहास चल रहा था बहुत सुंदरता से, जो है कृष्ण का कृष्ण के साथ सब आदान प्रदान कर रहे थे, तभी कुछ व्रजवासी जो है वो कृष्ण के सौंदर्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली देखा जाए तो कृष्ण 7 साल के हुए थे, लेकिन 7 साल में भी सबसे ज्यादा विशेष सौंदर्य उन्होंने गोवर्धन लीला में प्रकट किया। तो 7 साल के कृष्ण होते हुए भी कितना अप्रतिम सौंदर्य है, इसके कुछ व्रजवासी चर्चा करने लगे कि कैसा वो कृष्ण का आकृति था, वो बड़ा सुंदर, कि किस प्रकार से उन्होंने इस गोवर्धन को अपने बाएं हाथ पे धारण किया है और फिर दाएं हाथ से वो जो है अपने कटी पे हाथ रख के खड़े हुए हैं, एकदम सुंदर मुस्कान जो है सबके ऊपर, उसका दृष्टिपात करते हुए सबके ऊपर अपने मुस्कान से वो अमृत बरसाते हुए ऐसे, और सबको देख रहे थे कृष्ण, हरेक को दृष्टिपात से ही प्रसन्न कर रहे थे कृष्ण। जैसे जो सारे बड़े बुजुर्ग गोपगण आदि है उनको एकदम नम्रता के भाव से देख रहे थे और मानो जैसे उनके चरणों में वंदन कर रहे हो, सारे गोप सखा जो है उनको प्रेम से देख रहे थे, उनके साथ हास परिहास कर रहे थे, और फिर जो अन्य अन्य माता यशोदा आदि है उनके साथ वात्सल्य रस का आदान प्रदान कर रहे थे, और फिर गोपियां जो है श्रीमती राधा रानी आदि प्रियसी गोपियां उनके साथ भी वो जो गूढ़ प्रेम है उनका, उसका आदान प्रदान कर रहे थे। तो ये बहुत ऐसा सुंदर दृश्य जो है वहां पे हो रहा था। तो इस पूरे सुंदरता में, इस पूरे सुंदर दृश्य में और भी माधुरी बढ़ाने के लिए कृष्ण ने सोचा कि मैं अभी वंशी बजाता हूं, है कि नहीं, बाएं हाथ से तो गोवर्धन को धारण किया है लेकिन दाएं हाथ जो है खाली है, तो तुरंत अपनी वंशी निकाल के बजाना चाहते थे उस वंशी को सबके प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कृष्ण तो बड़े प्रसिद्ध है वंशी वदन करके। तो जैसे ही वंशी बजाने के लिए उद्युक्त हुए तो तुरंत मधुमंगल बोला, अरे रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो, वंशी बजा रहे हो, यहाँ पे वंशी मत बजाना, अरे तुम्हारे वंशी से फिसलने वाले लोगों का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उसने कहा अभी मुझे बताने को मत बोलो कौन कौन फिसलता है तुम्हारी वंशी से मधुमंगल। एक्चुअली मधुमंगल बड़ा रसिक भक्त है, बड़ा भगवान के निकटतम पार्षद है भगवान का ऐसे। तो बोले पहले का बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, आज वंशी बजाओगे और अगर ये गोवर्धन ही फिसल गया तो क्या होगा हमारा, हम सब का, तो ये हमारी रक्षा करने के लिए बना है, अगर ये गोवर्धन फिसल जाएगा तो हमारी रक्षा हो जाएगी। है क्या बोल रहे, रक्षा करने के लिए बना है, रक्षा हो जाएगी। हाँ बोला, वो पहले वाला रक्षा यानी पालन, दूसरी रक्षा यानी हमारी राख हो जाएगी। रक्षा कहते ना राख को भी ऐसे। तो इसलिए ये वंशी को आप बजाओ मत एकदम। बोले आपके वंशी का गुण ही है, जो द्रव पदार्थ होता है उसको घन कर देता है और घन को द्रव कर देता है, तो ये पर्वत जो है ये घन है, इसको द्रव कर देगा, पूरा पानी बह जाएगा पूरा पूरा नीचे, तो या तो हमको बहा दोगे या तो फिर उसको गिरा के हमारी रक्षा जो है वो हो जाएगी इस प्रकार से। तो ऐसे मधुमंगल के वचन सुन के एक दूसरा सखा बोला, अरे क्या है मधुमंगल, ऐसा थोड़ी ना होता है। उन्होंने कहा, अरे इतना धैर्यशाली है ये गोवर्धन जो है, देखो ये पूरे संवर्तक मेघों की धारा को इस प्रकार से सह रहा है और हमारी रक्षा कर रहा है, तो कृष्ण की मधुर वंशी की ध्वनि से क्यों ये जो है इस प्रकार से अपना धैर्य खो देगा। एक्चुअली उसने कहा कि धैर्यवान पुरुषों का तो गुण होता है कि अगर उनका हृदय परमानंद से पिघल भी जाए तो उस हृदय को स्तंभित कर देते हैं अपने ही अंदर, मतलब हृदय पूरा पूरा भी पिघल जाए उनका भक्ति के उन्माद से, कृष्ण के प्रेम से, तो भी ये धैर्यशाली पुरुष जो होते हैं उस प्रेम को स्तंभित कर देते हैं, मतलब रोक लेते हैं अपने अंदर। तो वैसे ही कितने भी ये माधुरी सुन ले भगवान की वेणु की, गोवर्धन धैर्यवान है, गोवर्धन जो है वो धैर्य धारण करेगा, वो जो है निश्चित रूप से स्तंभित होके ही खड़ा रहेगा जैसे अभी है करके इस प्रकार से एकदम। तो इसलिए उन्होंने कहा तुम ज्यादा यहां वहां डामाडोल मत हो मधुमंगल को, जरा तुम शांत रहो, बस तुम शांत रहते हो तो सब कुछ ठीक चलता है, इस प्रकार से ऐसे कहा उन्होंने एकदम। और फिर ब्रजवासी, कुछ ब्रजवासी जो है कृष्ण में और इंद्र में तुलना करने लगे, तो कहे कि एक्चुअली देखो कितना अंतर है कृष्ण में और हमारे ये कृष्ण में और ये इंद्र में, इस इंद्र की वर्षा, इस इंद्र की पूजा कर रहे थे हम लोग अब तक, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। तो उन्होंने कहा जैसे कृष्ण जो है गोत्रोन्नेता, गोत्र के उन्नेता, मतलब गोत्र कहते हैं संस्कृत में पर्वत को, पर्वत को गोत्र कहते हैं, तो जो पर्वत को उठाए हैं धारण किए हैं गोत्र उन्नेता, गोत्रोन्नेता, तो ऐसे कृष्ण है। और ये कैसा है, गोत्र क्षय कर, ये तो पर्वतों को तोड़ता रहता है इंद्र जो है वो, है कि नहीं। इंद्र बड़ा प्रसिद्ध है, पर्वतों के पंख काटता रहता है, 15 पर्वतों को वज्रपात करके तोड़ता रहता है करके ऐसे। तो एक्चुअली जब बोल रहे तो व्रजवासी भी बड़े चतुर है, इसका अर्थ है अन्य भी, गोत्र कहते हैं कुल को भी। तो गोत्र उन्नेता यानी जो अपने कुल का मान बढ़ाता है, कुल की महती बढ़ाता है, और गोत्र क्षय कर, ये कृष्ण के ब्रजवासियों के ऊपर और कृष्ण के ऊपर आक्रमण करके अपने कुल का विनाश कर रहा है, गोत्र क्षय कर, ऐसे भी उसका अर्थ होगा। एक पर्वत और कुल, ये दोनों भी अर्थ हो गए ऐसे। या इंद्र का अन्य एक नाम है एक आशापाल, उसको कहते हैं दिक्पाल जो है 10, उसमें इंद्र जो है पूर्व दिशा का ये करते हैं अध्यक्षता है कृष्ण। तो एक आशापाल मतलब एक दिशापाल आप कह सकते हो इस प्रकार से, जो कि पूर्व दिशा के दिक्पाल है, लेकिन कृष्ण जो है वो सकल आशापाल का है, मतलब सारी दिशाओं के दिक्पाल है कृष्ण जो है। उनके नियंत्रण में केवल एक दिशा नहीं है, प्राची नहीं है, बल्कि सारी दिशाएं हैं। तो ये तो अर्थ हुआ ऊपर ऊपर से, लेकिन दूसरा अर्थ हुआ कि एक आशापाल इंद्र के पास तो जाके कोई बस कोई कुछ जो चाहता है, जैसे इंद्र के पास जाके लोग भोग जो है उसकी कामना करते हैं, केवल उस आशापाल उस आशा को पूर्त कर सकता है सकल आशापाल कृष्ण। तो उनके पास जो भी जाता है उनके समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार धी तीव्रेन भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तो भी इस प्रकार से वो कहते हैं कि इंद्र के और कृष्ण में इतना अंतर होते हुए भी ये इंद्र जो है हरि नाम धारण करता है, इंद्र को भी हरि कहते हैं। आपको पता होगा संस्कृत भाषा में बहुत सारे अर्थ होते हैं शब्द के, तो हरि शब्द के 20 अर्थ है अलग अलग। तो उसमें खास करके भगवान हरि कृष्ण और इंद्र हरि करके बड़े प्रसिद्ध है, ये दोनों भी हरि। तो फिर व्रजवासी जो कोसने लगे इंद्र को, बोले काम ऐसे बिगड़े हुए हैं इसके, गए गुजरे हुए हैं, लेकिन भगवान का नाम धारण करता है हरि, देखो हरि नाम कैसा और काम कैसा इसका। इस प्रकार से व्रजवासी जो है ताड़न करने लगे इंद्र का इस प्रकार से। तो ऐसा बड़ा मधुर वार्तालाप चल रहा था सर्वत्र, और उसमें फिर श्रीमती राधा रानी और गोपियों वाले समूह का तो क्या कहना, वो तो सुमधुर वार्तालाप के एकदम सम्राज्ञी है श्रीमती राधा रानी और अन्य अन्य गोपियां ऐसे। तो वहां पे तो जो चर्चा हुआ है वो तो रसिकता की परिसीमा है पूरी एकदम। तो वो जो विषय है बड़ा उच्च है, तो उसमें मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जब भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों के ऊपर दृष्टिपात करते हुए सबके साथ अपने नेत्रों से आदान प्रदान कर रहे थे, तो सबके ऊपर नेत्रपात करते हुए जाते थे, तो जब श्रीमती राधा रानी के ऊपर दृष्टिपात करते थे तो तुरंत कृष्ण के पूरे अंग में शरीर में रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो ऐसा हो जाता था, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्रेम बड़ा उत्कट है, बड़ा विशेष है, सबसे प्रिय है श्री कृष्ण भगवान की एकदम ऐसे। तो स्वेद कंप कंट काश्रु भूषणांचिता, जैसे राधा रानी के लिए कहा है वैसे कृष्ण जो है उनका भी राधा रानी पे दृष्टिपात होते ही ये सब आ जाता था स्वेद कंप। तो एक बार ऐसे ही हुआ जब कृष्ण दृष्टिपात कर रहे थे, और ऐसा हुआ कि श्रीमती राधा रानी के ऊपर दृष्टिपात करते ही एकदम कंप हो गया, तो कंप हो गया तो वो हिल गया पूरा वो गोवर्धन जो है वो, तो सबने देखा अरे क्या हो रहा है ये गोवर्धन क्यों हिल रहा है करके ऐसे, और तुरंत कृष्ण संभल गए और फिर उसको स्टेबिलाइज कर दिया करके। लेकिन फिर कुछ गोपों को डाउट आया कि अरे ये जो कृष्ण है इसको शायद थक गया है, इसको नहीं झेप रहा है इसको वजन जो है गोवर्धन का वो बहुत ज्यादा हो गया करके, तो हम लोगों ने कुछ तो मदद करनी चाहिए ऐसे करके। तो अभी गोप है वो इतने सरल है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी सब लोग अपनी लाठी लगाएंगे गोवर्धन के नीचे, तो ताकि थोड़ा कृष्ण जो है डिवाइडेड लोड थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, तो फिर कृष्ण जो है थोड़ा कम शांति अनुभव करेंगे, या फिर कृष्ण जो है इनका बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा करके इस प्रकार से, क्योंकि वो तो नहीं समझ रहे कि क्या हो गया इधर करके, क्यों कंपन हो गया इस प्रकार का ऐसे। तो फिर सब अपनी अपनी लगुट जो है यो अपने अपने जो यष्टि है उस यष्टि को धारण करके गोवर्धन के नीचे डाल दिया करके ऐसे। तो जब ये ऐसे इस प्रकार से धारण किए गोवर्धन को लगुट उनके नीचे डाल के यष्टि डाल के, तो मधुमंगल उठ गया बोला ए लाठे वालों ये यष्टि वालों क्या कर क्या रहे हो तुम लोग। तो उन्होंने कहा अरे दिखा नहीं तुमको इतना कंपित हो रहा है करके ऐसे, बोले ये कुछ काम का नहीं है तुम्हारा, ये तुम लोग बस गोवर्धन को खुजला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी लाठियां जो लेके है ना, ये गोवर्धन को खुजलाने के सिवा और कुछ कार्य नहीं कर रही। अरे तुम लोगों को पता ही नहीं है वो क्यों कंपित हो रहा है घर के ऐसे। तो ये श्रांत होने के कारण, थके होने के कारण नहीं कर रहा है करके ऐसे, क्योंकि मधुमंगल तो रसिक है, मधुमंगल समझता है यहाँ पे क्या हो रहा है करके। तो इसलिए उन्होंने कहा ये लाठियां निकालो अपने अपने और रखो अपने पास। ये जो है अगर सही में थका होता था तो देखो उसकी कांति कैसी है, उसके चेहरे का तेज कैसा है। कोई थक जाता है तो तेज निकल जाता है उसके चेहरे का, इसके चेहरे का तेज तो देखो कैसा है, एकदम चंद्रमा की तरह दिख रहा है। वो कांति जो है कितनी शोभायमान है। तो इसलिए ये थका हुआ नहीं है और कुछ थका वगैरह नहीं है, वो कंप कुछ किसी और कारण के वश हो रहा है करके ऐसे। और ऐसे करके उन्होंने कृष्ण को स्मितहास्य किया और फिर कृष्ण समझ गए कि यू नो ये इस प्रकार से। बाकी व्रजवासी तो समझ नहीं पाए लेकिन कृष्ण समझते हैं कि कैसे उनके प्रिय सखागण है, वो समझते हैं ऐसे करके। तो फिर मधुमंगल का चालू हो गया तो यशोदा उठ के खड़ी हो गई। फिर बोले तू चुप बाजू में हो जा करके ऐसे। और भगवान को बोली अभी थोड़ा भोजन कर लो तुम, मैं कब से कह रहा हूँ कि तुम कुछ खा लो करके, तुम बस यही सब पे दृष्टिपात कर रहे हो, कभी वंशी बजा रहे हो या फिर कभी अन्य अन्य कुछ चीजें कर रहे हो, थोड़ा तुम भोजन कर लो ना मेरे लिए, तो कर लो कुछ तो भोजन करो। तो कृष्ण ने कहा कि अरे मैया तू देख नहीं रही क्या, मैं खड़ा हूं, खड़े खड़े भोजन नहीं करते, शास्त्र के विरुद्ध है। कृष्ण ने कहा खड़े खड़े भोजन करना ये शास्त्र के विरुद्ध है, तो इसलिए इस स्थिति में मैं भोजन नहीं कर सकता। तो अभी यशोदा माता है वो भी कृष्ण की माता है, वो थोड़ी ना कोई साधारण है। तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा लेकिन शास्त्र में ही कहा है कि मर्यादा काले, उसने कहा कि आपत्ति काले, जब आपत्ति का काल होता है तो मर्यादा नास्ती। आपत्ति काल में सब मर्यादा जो है वो उसको रख देना चाहिए साइड में ऐसे। तो ये आपत्ति का काल है, तुझे जो दोनों हाथ है तुम्हारे वंशी धारण किए हुए और गिरिराज धारण किए हुए दोनों भी एंगेज्ड है और तू खा नहीं सकता, तो मैं खुद जो है तुम्हें खिलाऊंगी ऐसे उन्होंने कहा यशोदा ने। बलराम जी भी रुके हैं तुम्हारे लिए, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक बलराम जी नहीं खाएंगे, और बलराम जी नहीं खाएंगे तो फिर अन्य नंद आदि भी नहीं खाएंगे, नंद महाराज आदि, और फिर बाकी गोपगण नहीं खाएंगे। तो इसलिए हे कृष्ण तुम इस भोजन को स्वीकार करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत विशेष ये कुछ व्यंजन जो है वो बनाए हैं लाए हैं, और फिर ये बहुत फ्रेश एकदम माखन था वो भी जो है यशोदा माता लेके आई थी, तो वो जो है तुम खा लो करके ऐसे। तो फिर सब बोल रहे थे हाँ हाँ खाओ 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 खाओ, स्पेशली मधुमंगल बोला अरे खाओ 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 जल्दी खाओ तुम। उसने कहा कि एकदम माता के हर आज्ञा को स्वीकारना चाहिए, जल्दी खाओ। अच्छा यशोदा बोली मेरे बाजू से बोल रहे ये माता की आज्ञा को स्वीकारना चाहिए। फिर बोला अरे हम लोग भी भूखे हैं, खाओ भाई हमने भी कुछ खाया नहीं है एकदम, तो तुम जल्दी खाओ तो फिर हम लोग भी कुछ खा सकते हैं, तुम नहीं खाओगे तो हम लोग कैसे खाएंगे इस प्रकार से। तो फिर कृष्ण जो है वो तैयार हो गए और कृष्ण ने कहा कि ठीक है माता आप ही खिलाइए ऐसे। तो फिर अपने हाथों से यशोदा माता जो है भगवान को इतना सुंदर वो जो सब कुछ व्यंजन लाए थे उसको खिलाने लगी और कृष्ण जो है खाने लगे। फिर इसके बाद बलराम जी आदे अन्य अन्य भी गोप और फिर सारे व्रजवासी ही उस सुंदर भोजन को लेके ग्रहण करने लगे एकदम कृष्ण को निहारते हुए। तो उस गोवर्धन के नीचे किसी भी चीज की कमी नहीं थी एक्चुअली। इंद्र को तो लगा कि यहाँ पे मैं पूरा उत्पात कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, लेकिन वहां पे पूरा व्रज ही शिफ्ट हो गया था। व्रज का कुछ ऐसा नहीं था कि जो वहां पे नहीं है करके। गायें थी, माखन था, दूध था, दही था, संगीत था, वहां पे सब नाचने वाले जो युवतियां थी वो सब थी, गाने वाले जो गोप आदि थे सब कुछ चल रहा था, महोत्सव पूरा 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 इस प्रकार से एकदम। और सारे रसों का प्राकट्य वहां पे भगवान ने किया। शिल कवि कर्णपुर कहते हैं कि भगवान ने सभी रसों को वहां पे प्रकट कर दिया, पांच प्रमुख रस और सात गौण रस, सारे के सारे रस प्रकट कर दिए भगवान। तो एक तो हमें पता है कि वो जहां पे कंस के मल्लशाला में प्रविष्ट होते हैं कृष्ण, तो वहां पे सारे रसों को प्रकट कर दिया था। तो यहाँ पे एक दूसरी लीला है ये गोवर्धन की, जहां पे अद्भुत रस, भयानक रस और क्या हास्य रस, दास्य माधुर्य साख्य सब कुछ है यहाँ पे एकदम। और इसकी विशद व्याख्या करते हैं श्रील कवि कर्णपुर जो है। तो इस प्रकार से बहुत विशेष रक्तक पत्रक आदि दास्य से लेके एकदम श्रीमती राधारानी आदि माधुर्य तक ये सारा आदान प्रदान जो है इस प्रकार से चल रहा था। सारा होते हुए भी बस यशोदा माता का जो वात्सल्य भाव है वो कभी कम नहीं होता था, एकदम समय समय पर एकदम कुछ तो खाने के लिए लेके आती थी। कृष्ण अभी तो खाया मैंने, नहीं 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 कितना समय हो गया उसको खा के, अरे नहीं अभी तो खाया था, तो नहीं। तो ये वात्सल्य भाव जो है यशोदा का हमेशा ही, इसको बहुत सुंदर रूप से कवि कर्णपूर और जीव गोस्वामी जो है इसका वर्णन करते हैं। तो इस बीच में ये सब चल रहा था, तब इंद्र एक बार आग के देख के चला गया क्या चल रहा है करके नीचे ऐसे। एक्चुअली उसके पहले भी उसने बहुत सारे दूत भेजे थे अपने, श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि बहुत सारे दूत भेजे, मेघ के दूत भेजे, फिर वायु के कुछ दूत भेजे उसने, तो सब लोग जाके बोले कि कोई दिख नहीं रहा है, ब्रजवासी पता नहीं कहाँ गए। अरे कहाँ गए, वो बोले मर गए सब। इंद्र बोला मरे होंगे, दूसरा क्या है, एकदम नहीं कोई दिख नहीं रहा बोले एकदम, और थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि गोवर्धन थोड़ा उठ के ऊपर आया है घर के ऐसे। तो इंद्र बोला उठ के ऊपर आया, तो मेरे को तो पंखों वाले पर्वत पता थे, ये गोवर्धन भी पंखों वाला है क्या, उड़ता वगैरह है क्या, तो फिर मैं देखने के लिए आता हूं। क्योंकि जो भी बोल रहे थे ये सारी चीजें, उसमें कोई बोल नहीं रहा था कि हमने कुछ ब्रजवासियों को देखा, वो उनका विनाश हो गया या गायों का विनाश हो गया करके। तो स्वयं जो इंद्र है वो देखने के लिए आए, तो देखा तो उन्होंने सचमुच में ये जो गिरिराज है ऊपर उठा हुआ था एकदम, और अपने ऐरावत पे बैठ के इंद्र का विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया है करके, इतना बड़ा गोवर्धन जो है उठा हुआ है करके, और गोवर्धन के ऊपर ये सामवर्तक जो वर्षा कर रहे थे उससे गोवर्धन के ऊपर के एक वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं टूटा था, एक पत्ता, लोग बोलते हैं ना अरे तो पत्ता भी नहीं हिला सकता, तो वैसे हो गया इंद्र के साथ, एक पत्ता भी टूटा नहीं हुआ था। उल्टा वहां पे वो जो प्राणी थे, हिरण सिंह और फिर गज हाथी आदि, वो सब नाच रहे थे एकदम, और वो सिंह वगैरह इंद्र की ओर देख के गर्जना कर रहे थे एकदम, अरे कौन है करके तू ऐसा। तो इंद्र को इतना आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, और क्रोध भी आया, तो उसने संवर्तक को कहा कि अरे तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, संवर्तक मेघों के जो अधिष्ठाता देव है करके, बरसो तुम और बरसो। अरे वो बोले और कितना बरसे, इधर हम लोग बरस ही रहे हैं एकदम, एक तो ओवर टाइम करवा रहा है ये एकदम, और ऊपर से आके डांट भी लगा रहे। तो बोले हम बरस रहे ठीक से बरसो, तुम लोग बरस नहीं रहे हो, पूरा तहस नहस कर दो एकदम ऐसे। तो फिर ऐसा डांट के उनको इंद्र चला गया, सोचते हो कि ये क्या हो रहा है करके, ये किस प्रकार से हो रहा है। तो ऐसे पूरी पूरी शक्ति लगाने के पश्चात भी एक्चुअली इंद्र उस गोवर्धन को और व्रजवासियों को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाया, कुछ भी क्षति नहीं हुई। गोवर्धन के नीचे तो छोड़िए, गोवर्धन के ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। शिल कवि कर्णपुर बोलते हैं इस प्रकार से गोवर्धन के नीचे कुछ नहीं हुआ, गोवर्धन के ऊपर कुछ नहीं हुआ, गोवर्धन के बाजू में जो व्रज था उसमें भी कुछ नहीं हुआ एकदम। क्योंकि जो भी पानी बरस रहा था सुदर्शन उसको मतलब व्रज भूमि के कुछ ऊपर ही जला के खत्म कर रहा था एकदम, फिनिश कर रहा था पूरा फिर उसको, तो इसलिए कुछ भी पानी जो है वो व्रज में बिल्कुल भी उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तो फिर श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा इंद्र ने इतना वर्षा करने के पश्चात भी ये महोत्सव जो है 7 दिन का और 7 रातों का ये निरंतर चलता रहा, किसी को पता भी नहीं चला कि बाहर क्या चल रहा है करके। जिस प्रकार की वर्षा बाहर हो रही थी, अभी हमारा भी कल से वर्षा चल रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ बड़ी आइडियल सेटिंग है इस लीला को बोलने की। तो अभी जैसे बंद हो गई है तो वैसे ब्रजवासियों के लिए हमेशा ही ऐसा ही बंद हो गई है, वर्षा कहाँ है करके, क्योंकि अंदर इस प्रकार से कृष्ण ने अरेंज कर दिया था सारा, मानो जैसे एयर कंडीशन रूम है, एकदम मंद वायु बह रही थी और बाहर सामवर्तक मेघ और इतनी भीषण वायु वगैरह, अंदर एकदम मंद वायु बह रही थी और सुंदर प्रकाश और एकदम पूरा परफेक्ट एटमॉस्फेयर जो है कृष्ण ने नीचे जो है वो बनाया था। इस प्रकार से उस 7 दिनों में इतना कुछ हुआ है, अभी हमारे पास और 15 मिनट है तो इतना कुछ हुआ है और इतनी कुछ लीलाएं हुई, इतना कुछ वार्तालाप हुआ। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं सप्ता अहर्निश निर्मिता गिरिभृता ये विलासा तदा तान कल्पयरपि सप्त भी शेषो भी कथयिता शेषो भी नाशेषता। बोलते हैं कि उसके यहाँ पे उस गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन के नीचे जो 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 लीलाएं हुई उसको भगवान शेष, जिनके 1000 मुख है, अपने 1000 मुखों को, अनंत मुख है, 1000 प्रमुख है, ऐसे 1000 प्रमुख मुखों वाले अनंत शेष 7 दिन की 7 रातों की उस लीला को ब्रह्मा जी के सात कल्पों के लिए भी बोलते रहे ना तो भी उसका पूरा जो विवरण है वो नहीं कर पाएंगे। शेष के बारे में बात कर रहे तो फिर जीव गोस्वामी बोलते तो हमारे जैसे छोटे मोटे कवियों की क्या बात है, फिर हम लोग उसकी क्या चर्चा कर पाएंगे। अर्थात जीव गोस्वामी छोटे मोटे कवि नहीं है, वो तो बहुत महान है। लेकिन फिर वो बता रहे कि कैसे अगर शेष भी इसमें इसको खत्म नहीं कर सकता इस गुणगान को, तो फिर बाकी हम लोग तो क्या कह सकते हैं थोड़े से समय में ऐसे। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं स्वयं असो दुर्भू या दो दू ये, बस हम लोग जो है ना हमारा दुर्भाग्य इस लीला को पूरी पूरी तरह से समझने का और इसको वर्णन करने का और इसको रिलीज करने का हम में जो पात्रता नहीं है, इस अपात्रता के दुर्भाग्य को हम लोग जो है कोसते रह सकते हैं बस, और कुछ नहीं उन्होंने वो कहते हैं ऐसे। तो देखिए इस प्रकार का ये जो महोत्सव हुआ व्रज वो गोवर्धन के नीचे, तो ये बहुत विशेष हम लोग देखते हैं कि वहां पे भगवान ने ये लीला की। तो देखिए भगवान ने इंद्र के साथ ऐसा क्यों किया, बराबर है। इंद्र को भगवान ने सीख सिखाने के लिए किस प्रकार से उससे युद्ध भी नहीं किया, उसको एकदम ऐसे मच्छर की तरह डील किया कि कितना तू बड़ा है, तुझ में कितनी शक्ति है। तो सबसे पहले तो इंद्र का भगवान ने पूजा रोक दिया, उसी सामग्री को लेके गोवर्धन की पूजा करवा दी। ब्रजवासी बोले ठीक है गोवर्धन की करेंगे और अलग से इंद्र की भी करेंगे, नहीं नहीं इंद्र की नहीं केवल गोवर्धन की और उसी सामग्री से एकदम। इसको करवाने के लिए फिलॉसफी भी गलत बोली क्या बोला कर्म मीमांसा बोले, तो कितना देखो प्रवोक करने की भी कुछ हद होती है कि नहीं। कर्म मीमांसा जैसी जैसे दर्शन को बोल के उन्होंने ये जो पूजा है उसको बंद करवा दिया एकदम। और फिर जब इंद्र ने अपना कोप दर्शाया, जब अपना जो पूरा आक्रमण करवा दिया, तो उसी गोवर्धन जिसकी पूजा की थी उसको ही धारण किए एकदम, मतलब जिस व्यक्ति से बहुत छिड़ है उसको ही खड़ा कर दिया आगे, बाकी कोई दिख नहीं रहा था, केवल गोवर्धन दिख रहा था उसको। तो उसके तो एकदम क्रोध जो है उसकी परिसीमा नहीं रही। माने आपकी जगह पे कोई विशेष सम्मान जो है, अभी हम लोग अभी प्रवचन करने वाले लोगों के हैं तो मैं उसका उदाहरण बताता हूँ। प्रवचन करने का विशेष कुछ त्यौहार है, उसका विशेष प्रवचन आपको दिया है और फिर आप आते हो तो देखते हो कि दूसरे ने चालू कर दिया ऑलरेडी, और वो भी कौन, वो अभी अभी नया डिवोटी आया है इस प्रकार का ऐसे। तो इसको कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उसका रोष जो है इंद्र के अंदर दिखाई दे रहा है। और फिर आप जहां भी जाते हो वो जो प्रवचन दिया हो आपके सामने आके स्माइल देता है अरे बहुत ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा आपका, अरे बोले इसको तो वैसे जहां भी जब भी व्रज के उस देखने को आए निरीक्षण को इंद्र, तो उसको कौन दिख रहा है, केवल गोवर्धन दिख रहा है और कोई देख ही नहीं रहा ऐसे। तो भगवान का ये गुण है, जैसा भगवान सांत्वन करने में, किसी के दुख को हल्का करने में भगवान बड़े निष्णात है ना, वैसे अगर किसी को उकसाना है तो फिर भगवान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। ऐसे उत्तेजित कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार से उत्तेजित कर दिया उन्होंने इंद्र को। और क्यों करते हैं उत्तेजित, क्या क्या कृष्ण का पर्पज है उत्तेजित? एक्चुअली उत्तेजित जब हो जाते हैं ना हम, तो हमें हमारी वास्तविक स्थिति समझती है, हम कौन है ये उत्तेजना के वक्त हम लोग समझ सकते हैं। एक्चुअली उत्तेजना मतलब ऐसा, जब प्रोवोकेशन कुछ आता है तो वो हमें हमारा परिचय करा के देता है कि हमारे अंदर क्या है, क्या छिपा हुआ है, हमारे अनर्थ कितने दूर तक जा सकते हैं। ये जो है ये दर्शाना है कृष्ण को अगर, तो बहुत ऐसे विशेष रूप से दर्शाते ऐसे। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हमारे अंदर जो छिपे हुए दुर्गुण है वो कभी हमारे पद के कारण या संस्कृति के कारण छिपे हुए रहते हैं। मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति है, मानिए बहुत अहंकारी है लेकिन बहुत बड़े ओहदे पे है, तो लोगों को लगता है कि अरे उसको सम्मान देना ही चाहिए, उचित है उसको सम्मान देना। तो उस व्यक्ति को भी लगता है कि मुझे सम्मान देना ही चाहिए, मेरे लिए उचित है करके। ये तो उस पद के पीछे क्या ये अहंकार है मेरा भाव कि मैं केवल सेवा के रूप में इसको ग्रहण कर रहा हूं, ये समझना उस व्यक्ति को भी कठिन हो जाता है कभी कभी। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो कृष्ण भगवान जो है ऐसी कुछ परिस्थिति कर देते हैं कि आपको साफ साफ दिख जाता है कौन हूं मैं करके ऐसे। तो हमारा पद हो या फिर तथाकथित जो सोफिस्टिकेटेड डीलिंग्स हो, इसके अंतर्गत कभी कभी छुपा हुआ हमारा अनर्थ जो है, अगर कृष्ण उसको सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो फिर कृष्ण इस प्रकार से उसका प्रदर्शन कर देंगे कि आप जो है मतलब एकदम हक्का बक्का रह जाओगे। तो उसी प्रकार से इंद्र का हुआ, इंद्र के अंतर्गत वो अहंकार था और कृष्ण दिखाना चाहते थे वो उसको, उसको लगा कि मैं स्वर्ग का राजा हूं तो इसलिए इतना सम्मान ये सब कुछ मेरे लिए होना ही चाहिए। लेकिन जितना सम्मान होना चाहिए उसके कई परे वो सोच रहा था, वो अहंकार का भाव, और इसलिए कृष्ण ने इसको दर्शा दिया, उसको एकदम सबके सामने समक्ष कर दिया कि किस प्रकार से ये केवल सम्मान की भावना नहीं है सेवा के लिए, लेकिन ये अहंकार है इस प्रकार से। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कृष्ण ने ये जो व्यवहार है वो किया, अर्थात ये भी कृष्ण की कृपा ही थी। ऐसे नहीं है कि कृष्ण किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, नहीं, कृष्ण हमारे ही अनर्थों का प्रदर्शन हमें करते हैं जिससे कि हम समझे और हम लोग जो है सुधार पाए, हम लोग स्वयं को आगे लेके जा पाए। तो इसलिए कृष्ण हमारे जीवन में भी अगर कुछ विपरीत स्थिति लाते हैं, हम लोग कुछ अनर्थ के अनर्थ को पार करने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं या कुछ कठिनाइयों को पार करने के लिए प्रार्थना करते हैं और हो सकता है और कठिनाइयां आ जाती है हमारे जीवन में, कभी कभी हम लोग सोचते हैं अरे ये क्या हो रहा है, ठीक से सुन रहे कि नहीं प्रार्थना, मैं क्या बोल रहा था और भगवान क्या कर रहे, मेरे जीवन में और कठिनाई आ गई, मैं तो कठिनाई निकालो बोल रहा था और कठिनाई आ गई। तो देखिए इसमें ऐसा है कि एक्चुअली हम लोग हमारे जीवन में रास्ता आगे कहाँ तक है ये कुछ मीटर तक देख पाते हैं, कृष्ण पूरा रास्ता देखते हैं। एक्चुअली क्या है हमारे जीवन में, ये कृष्ण पूरा रास्ता देखते हैं। तो अगर इस माने आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा चट्टान डाल दिया कृष्ण ने, आपको ऐसे लग रहा है, तो हो सकता है आगे कुछ दलदल होगी और वो कृष्ण देख पा रहे, लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे क्योंकि हम लोग तो कुछ थोड़ा ही देख पाते। तो उस दलदल से बचाने के लिए चट्टान डाल दी बीच में और हम लोग सोच रहे अरे क्या है मेरे जीवन में, ऐसे क्यों कर रहे हैं कृष्ण ऐसे। तो उस चट्टान को देख के फिर हमारा मार्ग बदल देंगे हम लोग और फिर से उस दलदल से बच जाएंगे। तो ऐसा है, इस श्रद्धा के साथ एक भक्त जो है वो अपना जीवन जीता है कि कृष्ण मेरे जीवन के लिए क्या अनुकूल है ये मेरे से बहुत अच्छा देख सकते हैं, और इस श्रद्धा के साथ लेके चलेंगे तो हमारे जीवन में भले ही कुछ कठिनाइयां आएगी, हमारे पास श्रद्धा और धैर्य जो है वो रहेगा कि जिसके कारण हम लोग है उस स्थिति से आगे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से 7 दिन 7 रात पूरा ये जो घनघोर वर्षा हुई, ये जो घनघोर सांवर्तक मेघ वगैरह बरसाए, तो उसके पश्चात इंद्र जो है देखा कि उसने अंत में कि ये हो नहीं रहा है करके, तो वो स्वयं आके उसने वज्रपात करना चाहा गोवर्धन के ऊपर। तो गोवर्धन के ऊपर वज्र मारा इंद्र ने, तो वज्र टूट गया, वज्र के जो कुछ प्रॉन्ग्स रहते हैं वो सारे टूट गए, और इंद्र को आश्चर्य लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, वज्र कैसे टूट रहा है ये गोवर्धन जो है इसके साथ। तो बलदेव विद्याभूषण गोवर्धन शब्द का अर्थ देते हैं। एक्चुअली गोवर्धन शब्द का अर्थ एक तो आपको पता होगा, गो कहते हैं गाय को, और वर्धन यानी जो गायों का वर्धन करते हैं, कैसे घास देके, जल देके, अन्य अन्य चीजें देके, ये गोवर्धन का एक अर्थ। लेकिन दूसरा एक अर्थ बलदेव विद्याभूषण गोवर्धन अष्टक के अपने टीका में करते हैं, वो कहते हैं कि गो कहते हैं वज्र को, और वर्धन ये शब्द जो आता है वर्ध से आता है, वर्ध छेदने ऐसा धातुपाठ अर्थ करता है, वर्ध का अर्थ होता है छेदन, तोड़ देना, तो जो वज्र को तोड़ देता है वो गोवर्धन। तो यहां पे गोवर्धन ने है जो वज्र है उसको भी तोड़ दिया, तो इसलिए गिरिराज को गिरिराज कहा गया है जो पर्वतों का राजा है। कैसे है पर्वतों का राजा, अरे ये इंद्र को बहुत अच्छा लगता है ना सारे पर्वतों के पंख तोड़ के उन जो पर्वत है उनको नीचे बिठा देने का, इनको स्थिर कर दो, इंद्र कहता है पंख काट के वगैरह ऐसे। तो सारे इन पर्वतों के प्रतिनिधि के रूप में आज गिरिराज ने वज्र को तोड़ दिया, तो इसलिए गिरिराज ये जो है गिरियों के राजा माने जाते हैं, गिरिराज गोवर्धन के। तो ये गिरिराज जो है उन्होंने वज्र तोड़ दिया, और वज्र के साथ साथ इंद्र जो है उसकी वो जो बुद्धि है वो भी ठिकाने ला दी। जब वज्र टूटा तो इंद्र को समझा कि ये बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है, ये जो शक्ति है ये केवल इस पर्वत की नहीं है। तो इंद्र समझ गए एक्चुअली कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उनको लगा कि अरे ये भगवान जो लीला कर रहे हैं गोकुल में, ये कृष्ण ये साक्षात विष्णु ही है, मैं क्या कर रहा हूं, ये इनको अभी अभी तक वो उस अहंकार के मद में हैं, वो इस चीज को पूरी तरह से भूल चुके थे। वही इंद्र है, आपको याद होगा, जो आके देवकी के गर्भ में गर्भ स्तुति करके गए भगवान की, लेकिन अभी वो अहंकार के वश इसको कृष्ण को वाचालम स्तब्धम बालिशम ऐसे सोचने लगे कि ये तो लड़का है करके, छोटा सा और वाचाल है और बालिश है करके। लेकिन अभी उनको वो स्मृति आ गई कि अरे ये तो साक्षात विष्णु है, ये तो मेरे आराध्य है, कृष्णा है ये तो एकदम लज्जित हो गए, एकदम डर गए। पहले तो भयभीत हो गए कि ये क्या कर दिया मैंने, मेरे स्वामी जो है उनके ऊपर ही आक्रमण कर दिया, वो भी व्रजवासियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो सोचने लगे अभी कहाँ जाऊं, घर पे जाऊं तो कैसे, किस मुंह से जाऊं एकदम। तो ऐसे कहते हैं कवि कर्णपुर, वहां पे उनका जो निलय है स्वर्ग निलय, वो निरय बन गया। निरय कहते हैं नरक को, यू नो संस्कृत भाषा में र और ल को आप परस्पर की जगह डाल सकते हो, इसलिए प्रहराद और प्रहलाद ये दोनों भी कहा जा सकता है। तो रलयो हो अभेद ये सूत्र है। तो उन्होंने कहा उनका निलय जो है निरय बन गया, जैसे मानो नर्क बन गया। तो इंद्राणी से भी मिलने की इच्छा नहीं थी उनकी, पूरी पूरी इच्छा सब कुछ गई, बोले कहाँ जाना चाहिए वगैरह। तो भी ऐसे विषण मन से चले गए वापस अपने घर पे, और बृहस्पति को पता चला किसी दूत के द्वारा इंद्र का ये महाप्रताप क्या किया है करके ऐसे। तो बृहस्पति ने बोला जरा इंद्र को बुलाओ मिलने के लिए एकदम। तो एकांत में इंद्र को बुला लिया बृहस्पति ने, करेक्शन इन प्राइवेट नहीं ग्लोरीफाई इन पब्लिक ऐसे। तो फिर करेक्शन जो है प्राइवेट में देने के लिए बृहस्पति ने बुलाया, और बृहस्पति इतने गुस्सा हो गए, बोले क्या किया तुमने इंद्र ये, अरे तुम सहस्त्र दश दृश हजार नेत्रों वाले इंद्र होके तुमने ऐसा अंधापन कैसे दिखाया, तुम्हें ऐसी मदांधता कैसे आई, हजार नेत्रों से तुमको दिखा नहीं ये कौन है करके। कृष्ण है सुरेश, अरे तू सुरों का राजा है असुरों का राजा नहीं है, सुरेश सुराणाम ईशा इति सुरेश एकदम। तो बोले लेकिन सुरेश सही है एक्चुअली, तू सुरेश है, सुराणाम ईशा नहीं, सुराया ईशा इति सुरेश। सुरा कहते हैं मदिरा को, तेरा बिहेवियर ऐसा है जैसे शराबियों का राजा है तू करके ऐसे। मदिरेश सुरेश का दूसरा अर्थ जो है उन्होंने लिया ऐसे। और उन्होंने कहा कि ये अमृत पीते हो तुम, और अमृत से सत्व गुण वर्धन होना चाहिए, अमृत पी के तुम्हारे मन में ऐसा चांडाल का भाव कहां से आ गया, एकदम उसका एक एक शब्द जिस प्रकार से उसको बुलाते इसको लेके ऐसे डांटने लगे। वृषाहव्य ये नाम है इंद्र का एक, वृषाहव्य। तो उन्होंने कहा लेकिन तेरा बर्ताव तो बैल जैसा है, बैल की बुद्धि होती है ना मोटी, वैसे तेरा बर्ताव है करके, तो तू क्या कर दिया ये इंद्र करके। तो इंद्र बोला अभी गुरुदेव जो हो गया वो हो गया, अभी आप कुछ करो, आप कुछ करो, आप तो डांट फटकार लग रहा है, बहुत डांट लगानी चाहिए तुमको। तो उन्होंने कहा मेरे से कुछ नहीं होगा, अभी तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ करके। तो इंद्र एकदम विषण मन से ब्रह्मा जी के पास चला गया, और फिर वहां पे ब्रह्मा जी जो है उन्होंने देखा कि इंद्र आया है, और फिर इंद्र ने बताया कि ये गलती जो है ब्रह्मा जी को बता दी उन्होंने, हो गई गई, ब्रह्मा जी को पता भी चल गया था ऐसे। तो ब्रह्मा जी भी चालू हो गए, बोले अरे तेरा नाम विभुधेश्वर है, विभुधेश्वर विभुदों के ईश्वर, विभुदाणाम ईश्वर मतलब देवताओं को विभुत कहते हैं, अरे तू विभुधेश्वर होते हुए ऐसे बुद्धिहीन की तरह कार्य कैसे किया तूने। उन्होंने कहा, तो इंद्र को लगा अरे इधर भी चालू हो गया डांट फटकार करके। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप कुछ कीजिए, आप ही भगवान को शांत कर सकते। तो उन्होंने कहा अरे मैं क्या शांत करूं, मेरा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है कुछ। तो वो कहा, उन्होंने कहा कि मैं तुझे लेके नहीं जा सकता। भगवान बोलेंगे अच्छा इसकी वकालत के लिए ब्रह्मा है एकदम, ब्रह्म विमोहन करके याद है आपको। तो ब्रह्मा बोले मेरे बस की बात नहीं है ये, मैं नहीं कर सकता कुछ, तुम जाओ सुरभि के पास, भगवान गो जाति के गोपालक है, गो जाति के बड़े सरदय मित्र है, पालक है, तो तुम सुरभि के पास जाओगे तो सुरभि जो है वही कुछ कर सकती है, कामधेनु जो है सारी गायों की माता, तो उनके पास जाओगे तो कुछ कर सकते हो ऐसे एकदम। तो फिर जो मौसी है एक्चुअली सुरभि जो है इंद्र की माता अदिति और सुरभि ये दोनों बहनें हैं, तो मौसी बड़ी प्रिय होती है कि नहीं। तो मौसी के पास जाके इंद्र ने फिर बहुत क्रंदन किया और कहा कि मौसी देखो ये ऐसा हो गया, और सब डांट फटकार लगा रहे, हाँ मानता हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आप तो कुछ मदद कीजिए। तो सुरभि ने कहा कि अरे ये बात तो बहुत है कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये कृष्ण को व्रजवासियों को खत्म करने का प्रयास किया तूने, किया गो गो जाति को खत्म करने का प्रयास किया, कृष्ण तो बहुत इनसे प्रेम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई ऐसे। लेकिन ब्रह्मा जी ने जैसे कहा था वैसे इंद्र जो है सुरभि को लेके आए ब्रह्मा जी के पास, और फिर ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि सुरभि को कि आप जाइए करके ऐसे। इस दुष्चवन जाते जाते भी और एक बोले इस दुष्चवन इंद्र के लिए आप जाके जरा कृष्ण से क्षमा याचना कीजिए। दुष्चवन इसका क्या अर्थ हो गया? दुष्चवन याने चवन नामा ऋषि दुस्सह यस्य इति दुष्चवन। एक्चुअली चवन ऋषि बड़ा प्रसिद्ध है, इंद्र को बहुत हैरान करता है, परेशान करता है। अश्विनी कुमारों को भी इंद्र की इच्छा के विरुद्ध उसने ये दे दिया था, जो यज्ञ है उसमें भाग दे दिया था। तो दुष्चवन इसलिए इंद्र को कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने जाते जाते क्या टोमना क्या बोला, बोले दुष्चवन याने दूषिते पाप रूपे विषय चवती इति दुष्चवन। मतलब क्या, जो पाप की या कुछ अपराध की अपॉर्चुनिटी आ जाए तो पहला गिरता है उसमें, ये इंद्र है, सबसे पहला करेगा वो एकदम, जहां भी अपॉर्चुनिटी आ गई कुछ पाप की या अपराध की, चवती एकदम जुप करके गिर जाता है उसमें ऐसे। तो ये दुष्चवन इंद्र है, तो इसको लेके जाके क्षमा याचना कराओ करके ऐसे। तो इंद्र ब्रह्मा जी से अनुमति लेके चला गया। और फिर एकादशी के दिन कामधेनु जी, यहाँ पे सुरभि जी जो है वृंदावन धाम में प्रकट हुई भगवान की क्षमा याचना करने के लिए इंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे। और उस दिन गोवर्धन के एक शिला पे कृष्ण जो है अकेले ही बैठे हुए थे, उस दिन कोई साथ नहीं था उनके ऐसे। हालांकि उस दिन तो बलदेव जी आए ही नहीं थे और गोपगण भी बाकी अन्यत्र सब विचरण कर रहे थे। तो इंद्र के क्षमा याचना करने के लिए इंद्र आने वाला है ये कृष्ण जानते थे, तो इसलिए कृष्ण अपने से ही अकेले रह गए, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति आ रहा है सबके सामने, वो भी मधुमंगल के सामने वगैरह करेक्शन दे दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसका ऐसे करके। तो इंद्र अकेले रह गए, तो जैसे ही वहां पे सॉरी कृष्ण अकेले थे वहां पे गोवर्धन के उस सुंदर एक खड़क पाषाण पे बैठे हुए, तो जैसे ही वहां पे सुरभि आई, 5 मिनट लूंगा मैं और बस ज्यादा, तो जैसे ही वहां पे सुरभि आई तो सुरभि ने इंद्र को कहा कि जाओ कृष्ण अकेले है, तुम जाके उनका उनके चरणों में गिरो और क्षमा याचना करो। अरे इंद्र बोला आपको साथ में क्यों लेके आया है, आप मुझे अकेले को क्यों बोल रहे जा रहे करके, इनके सामने मैं मेरे को भय लग रहा है एकदम, मैंने इनका इतना अपराध किया। तो सुरभि ने कहा तुम जाओ और उनके चरणों में गिर पड़ो। कभी कभी बड़े व्यक्ति को लेके आए तो लगता है कि वकालत करने के लिए लेके आया किसको, तो उसका उल्टा भी इफेक्ट हो जाता है। तो तुम पहले जाके उनके चरणों में गिर पड़ो, फिर मैं आऊंगी पीछे से एकदम। तो इंद्र बोला अभी ठीक है, क्या कर सकते हैं दूसरा। तो ऐसे भगवान बैठे थे और जाके तुरंत इंद्र, एक्चुअली इंद्र का भी भाव बहुत अभी तक तो पश्चाताप का हो ही गया था, ऐसे नहीं कि इंद्र को बहुत अपने कृत्य का पश्चाताप हो गया था। तो एकदम भगवान कृष्ण के सामने जाके इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े और इतना उनको दुख हुआ था कि ऐसा महान अपराध मैंने भगवान का कर डाला। तो एकदम कृष्ण के चरणों में गिर के कृष्ण के चरण नखों को अपने अश्रुओं से धोने लगे इंद्र, इतना क्रंदन करने लगे। जब वो चरण कृष्ण के चरण नख बड़े दैदीप्यमान है, तेजस्वी है, जब इंद्र का मुकुट वहां पे लगा तो उस मुकुट के ऊपर मानो वो कृष्ण के चरण नख जो है सुंदर मणियों की तरह लग रहे थे एकदम, कृष्ण के वो चरण कमल, वो कृष्ण इंद्र के मुकुट बनियों की शोभा सब चली गई, वो कृष्ण के चरण नख उसमें सुंदर मोतियों की तरह लग रहे थे एकदम। और जैसे चंद्र के सानिध्य में कुमुद होता है, कुमुद आप जानते हो लिली, तो उससे मधु निकलता रहता है, वैसे इस कृष्ण चरण रूपी चंद्र के सानिध्य में होने की वजह से ये इंद्र के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, इतने अश्रु बहने लगे। तो भगवान ने एकदम देखा तो बोले अरे भगवन, उन्होंने कहा इंद्र को भगवन, हे भगवन, भगवान इंद्र कहते हैं ना, और उस मुकुट को ऐसे धारण करके उठाया भगवान ने। अरे उठिए, बोले आप क्यों ऐसे इस प्रकार से, ये आपको शोभा नहीं देता, आप ऐसे क्यों मेरे चरणों में गिरे हुए करके ऐसे, आप तो देवराज हो। तो ऐसा बोला तो इंद्र और क्रंदन करने लगा एकदम, और रोने लगा भगवान के लिए, आपको शोभा नहीं देता वगैरह ऐसे इस प्रकार से। एक्चुअली इंद्र को याद आ रहा था इस चरणों में मैंने कितनी बार इस मुकुट को रखा, लेकिन आज इस मुकुट को चरणों में रख रहा हूं इंद्र के कृष्ण के, लेकिन इसमें मेरी कितना बड़ा अपराध हो गया है, इसके कारण मुकुट मैं रख रहा हूं ऐसे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद भागवतम में एकदम क्रोध से एक श्लोक कहते हैं, जब ये जो पारिजात था, पारिजात फूल जब सत्यभामा देवी को चाहिए था, तो फिर वहां पे इंद्राणी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा अपमान कर दिया एक्चुअली सत्यभामा देवी का, और कृष्ण के बारे में भी कुछ बोली। और दे भगवान गए थे देने के लिए अदिति के ही कर्ण कुंडल और ये सब, मतलब इंद्र की सहायता के लिए गए थे उधर। और जब केवल पारिजात मांगा तो इंद्राणी बोली नहीं नहीं ये तुम लोगों के लिए नहीं है, ये स्वर्ग वालों के लिए होता है। ऐसा किसको बोल रहे? सत्यभामा को। तो सत्यभामा बोली अच्छा ठीक है, तो कृष्ण को बोली कि ये बोल रही कि ये केवल स्वर्ग वालों के लिए होता है। कृष्ण बोले पूरा पेड़ लेके जाएंगे हम, ठीक है, कुछ कुछ ये नहीं, केवल फूल नहीं, पूरा पेड़ लेके जाएंगे ऐसे करके ऐसे। तो पेड़ लेने के लिए गए तो फिर इंद्र को पता चला ये पेड़ उखाड़ के लेके जा रहा है। अब भी अपनी माता का कर्ण भूषण दिया था कृष्ण ने, और जैसे ही पता चला कि ये पेड़ लेके जा रहा है, इंद्र बोला आक्रमण करो इसके ऊपर, कृष्ण के ऊपर। वो पारिजात पेड़ स्वर्ग का है, कैसे लेके जा सकता है? कृष्ण बोले आओ जिसको आना है करके, सबको परास्त करके पेड़ उखाड़ के लेके गए कृष्ण जो है वो। तो इस अध्याय के अंत में श्रील सुखदेव गोस्वामी क्रोध से कहते ययाच आनम में किरीट कोटि भी पादौ स्पृशन अच्युतम अर्थ साधनम सिद्धार्थ येतेन विग्रहते महान अहो सुरानाम चतमो धिक आढ्यताम। वो कहते अरे जब इसको जरूरत थी तो अपने सब देवगणों को लेके अपना किरीट लेके भगवान के चरणों में गिराए और बोला कि ये असुर लोग सब छीन के लेके गए, आप मेरा अर्थ साधनम, मेरा आप गुजरान क्या मेरा जो है ऑक्यूपेशन दे दीजिए करके। पादौ स्पृशन अच्युतम अर्थ साधनम, अच्युत को अर्थ साधन मांगने लगा, मेरा राज्य दे दीजिए, मेरा कैसे होगा एकदम। और सिद्धार्थ जब भगवान ने दे दिया, सब अर्थ सिद्ध हो गया, तो येते न विग्रहते, इसके द्वारा भगवान के साथ झगड़ा करते, अरे अहो सरानाम सुरानाम च तमो धिकार, अरे धिकार है। सुखदेव गोस्वामी कहते ऐसे देवताओं के तम का, ऐसे उनके अज्ञान का धिक्कार है, धिक्कार है, एकदम क्रोध से कहते हैं ये जो है हमारे आचार्य बताते हैं ऐसे। तो इस प्रकार का हम लोग देखते हैं कि कैसे, हालांकि कृष्ण के कारण ही इनको अर्थ साधन है, लेकिन अहंकार के भाव में आ जाते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं कि ये किसने दिया है करके वगैरह। तो उस सारे अपराधों को याद करके अभी यहाँ पे पूरा पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था इंद्र जो है वगैरह ऐसे। तो फिर इस प्रकार से इंद्र ने अपने पश्चाताप में भगवान से सुंदर प्रार्थनाएं की। ये 10 प्रार्थनाएं बड़ी प्रसिद्ध है, भागवतम में आप पढ़ सकते हो। खास करके इसमें अंतिम प्रार्थना यह है, त्वयेशानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्त स्तंभो वृथोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। वो कहते हैं कि भगवान एक्चुअली आपके द्वारा अनुग्रही हुआ मेरे ऊपर, ये जो आपने मेरा मान भंग कर दिया, गर्व हरण कर दिया, ये एक्चुअली मेरे ऊपर अनुग्रह ही है। ध्वस्त स्तंभो, सारा मेरी हेकड़ी निकाल दिया आपने, सारा गर्व जो है मेरा पूरा तोड़ दिया एकदम। वृथोद्यम, और ये जो मैं उद्यम कर रहा था सब गिराने का, उसको वृथा कर दिया, व्यर्थ कर दिया। ऐसे आप ही ईश्वर है और आप मेरे गुरु है, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। तो भगवान ने भी इसके बाद एकदम गंभीर वाणी में एकदम स्मित करते हुए भगवान ने कहा कि एक्चुअली जो माम ऐश्वर्य श्री मदान्दो दंड पानी न पश्यति तम भ्रमशयामी संपद्भ्यो यश्च च इच्छामी अनुग्रहम। भगवान ने कहा कि क्या होता है, कोई ऐश्वर्य और श्री के मद से जब अंध हो जाता है ना, तो देखता नहीं है कि दंड पानी, मैं दंड पानी हूं, मैं शास्ता हूं, मुझे देख नहीं पाता है वो, उसको लगा है मैं ही शास्ता हूं, कौन है मेरे ऊपर। तो माम दंड पानी न पश्यति, जो मदान्ध हो गया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए मैं उसका जो मदान्ध होने का कारण है, जैसे इंद्र का कारण क्या था, उसकी शक्ति, उसको ही निकाल लेता हूं, फुस क्या हो गया, जो जिसके कारण आपको बहुत गर्व है ना, उसको निकाल लेता हूं। तम भ्रमशयामी संपद, भगवान कहते वो संपदा ही निकाल लेता हूं। तो फिर वो ऐसा व्यक्ति फिर क्या है, वो एकदम जैसे ऐसे मानो कोई बहुत विशाल, जैसे प्रभुपाद भी बताते पुनः मूषक अभव स्टोरी है क्या नहीं, किसी को आपने शेर बना दिया, सिंह बना दिया और गर्जना कर रहा है आ करके, और जिसने शेर बना दिया उसके ऊपर ही आक्रमण कर रहा है, तो पुनः मशक भव, फिर से बन जाओ चूहे, फिर क्या क्या कर सकता है वो। तो वैसी स्थिति हो जाती है एक्चुअली, भगवान जो है संपदा निकाल लेते हैं, अगर कोई उनकी दी द्वारा संपदा से ही अहंकारित होता है तो भगवान उस संपदा को ले लेते हैं, और फिर वो जो है ठिकाने पे आ जाता है दिमाग। तो भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ ये किया, लेकिन शक्र हे इंद्र जानो, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम में अनुशासनम स्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तेर वह स्तंभ वर्जिते। लेकिन हे इंद्र, भले ही तुमने अहंकार का प्रदर्शन किया हो, डरो नहीं, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं क्या दंड दूंगा, राज्य छीन लूंगा या अभी असुर आक्रमण करेंगे, उधर तो न्यूज पहुंची गई है कि इंद्र ने क्या आक्रमण किया है करके बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि गम्यताम, जाओ इंद्र, और क्रियताम में अनुशासनम, मेरे प्रतिनिधि के रूप में जाके अनुशासन करो, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं तुम्हारी पोस्ट से, एकदम अनुशासन करो, लेकिन स्वीयताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार के मर्यादा में रहो, एकदम भगवान ने कहा। और ऐसे और स्पेशली स्तंभ वर्जित, ये अहंकार को त्याग दो। श्री जीव गोस्वामी तो कहते हैं, ये भागवत में नहीं है, श्री जीव गोस्वामी कहते ये चीज भी भगवान ने कही और उसका अलग अलग से उसका वर्णन करते हैं इस श्लोक का। कहते हैं अहम उन्मूल इष्यामि शक्र त्वद वैरी पक्षगान कथम मन्य से भीति नीतिमेव प्रवर्त। भगवान ने कहा इंद्र अगर तुम्हें डर है कि असुर लोग क्या करेंगे तो बता रहा हूं मैं, कृष्ण ये उस इंद्र को कह रहे हैं जिसने अभी अभी इतना बड़ा अपराध किया है, उसको कह रहे हैं कि इंद्र निश्चिंत रहो, तुम्हारे एक एक शत्रु को जड़ से उखाड़ दूंगा मैं। कृष्ण कह रहे हैं उस इंद्र को जिसने उनके ऊपर इतना अभी आप अच्छा तन अहम मूल उन्मूल इष्यामि, सारे तुम्हारे वैरी पक्षों को एक एक को करके मैं जड़ से निकाल दूंगा, बस तुम मुझसे भीति मत रखो इंद्र, मुझसे क्या भीति है तुम्हें, तो तुम भयभीत मत हो लेकिन बस नीति को बनाए रखो और नीति से ये करो, नीति से पूरा राज्य जो है वो करो। तो इस प्रकार से कृष्ण की जो कृपा है, इस कृपा को देख के इंद्र तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं और पूरा क्रंदन करने लगते हैं। तो फिर इंद्र को इस प्रकार से निर्भय देख के फिर वहां पे सुरभि आ जाती है, और जैसे ही सुरभि को देखते तो कृष्ण इतने खुश हो जाते हैं, बोलते कि आप कैसे आई यहाँ पे, तो बोलती है कि एक्चुअली इंद्र जो है इसके द्वारा ये बहुत बड़ी गलती हो गई और फिर हमने सोचा कि आज आपका अभिषेक करेंगे, गवेंद्र गवाम इंद्र मतलब गायों के इंद्र करके, या गोलोक महेंद्र गोलोक के, ये तो इंद्र है ये स्वर्ग का इंद्र है लेकिन आप तो गोलोक महेंद्र हो, तो आप जो है इस अभिषेक को स्वीकार कीजिए, आज हम लोग ये करना चाहते हैं। और ये इंद्र के हजारों नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है वो भी इसी को दर्शा रहा है कि आपका अभिषेक होना चाहिए करके, ऐसे सुरभि ने कहा। फिर भगवान बोले सुरभि आप जो चाहिए वो कर सकती है मेरे साथ, क्योंकि आप तो बड़ी प्रेमी है, आप बड़ी प्रेमी भक्त है। तो ये भगवान का तुरंत उनका रेसिप्रोकेशन होता है। फिर वहां पे भगवान की अनुमति से सारे विद्याधर चारण, ब्रह्मा शिव देवगण नारर्षि नारद मुनि देवर्षि सब आ जाते हैं वहां पे, और वो जो अभिषेक का वर्णन है उसके लिए अलग से 2 घंटों की कक्षा लगेगी, ठीक है, केवल उस अभिषेक के वर्णन के लिए पूरा 2 घंटे लगेंगे कम से कम। इस प्रकार का अभिषेक जो है वहां पे होता है, बस ऐसा जबरदस्त अभिषेक करते हैं वो भगवान का। ये सारा इसके साथ अंत करूंगा, ये सारा अभिषेक करके ये जो देवतागण है वो अभिषेक कर रहे होते, आरती कर रहे होते, तभी व्रज के गोपगण आ जाते हैं वहां पे, लेकिन दूर से देखते हैं क्या चल रहा है। तो इनको आदत नहीं है कृष्ण का ऐसा पूरा ये देखने की, देवता वगैरह लोग इतने लोग वहां पे आके सारे सम्मान कर रहे अभिषेक कर रहे, तो दूर से देखते क्या चल रहा है ये करके ऐसे। तो गोपगण जो दूर रहते हैं और जैसे ही वो चले जाते हैं फिर भगवान की अनुमति लेके देवता आदिगण, तब फिर व्रजवासी वो जो गोपगण है वो आते हैं कृष्ण के पास। ये सारे देवताओं ने वो चामर और कुछ 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 व्यंजन कृष्ण के लिए इतने सारे उपहार लाए थे वो सब लटका दिए यहाँ वहां पेड़ पे, कृष्ण के लिए आपके लिए है करके ऐसे, और कृष्ण को बोले ठीक है आप आज्ञा दीजिए करके। और पूरे सेरेमनी में कृष्ण जो है एकदम सीरियस, ठीक है जाइए करके ऐसे एकदम, जैसे ही गोपगण आ गए ना तो कृष्ण एकदम उनका हास परिहास चल हो गया करके। तो पहले छुपके से गोप देख रहे थे, अभी देवता लोग देखने लगे ऊपर से छुपके से क्या हो रहा है करके। अरे बोले ये इतना सीरियस थे अभी तक, अभी तुरंत हंसना हंसना चालू कर दिया कर, अभी देख रहे। और फिर गोपगण बोले लगे ये क्या चल रहा था, ये कृष्ण अभी ये सब चामर वामर कर रहे हैं तुमको, वो चार मुंह वाला कौन था, एक गोप ने कहा वो चार मुंह वाला कौन था, और दूसरा वो पांच मुख वाला तो वो तो मैंने कभी नहीं देखा ऐसे, तो पंचमुख चतुर्मुख कौन थे करके इस प्रकार से। और बोले वो हाथी तो था उसके तो कई ज्यादा सुंडे थी, एक नहीं सुंड थी उसकी बहुत सारी सुंडे थी, यहाँ वहां पानी आकाश गंगा से लाके बहा रहा था एकदम, तो ऐसे। तो कृष्ण ने कहा नहीं कुछ चल रहा था ऐसे ही एकदम, कृष्ण ने कुछ बोला नहीं उनको। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए कुछ विशेष है, और वो सारे उपहार देवताओं के दिए हुए खोल खोल के कृष्ण देने लगे अपने सारे मित्रों को, ये वस्त्र तुम ले लो, ये कर्ण कुंडल तुम ले लो, और ये क्या चोकर नेकलेस लॉन्ग नेकलेस जो भी कुछ है वो सब देने लगे ऐसे। और फिर इसके आदान प्रदान में वो व्रजवासियों के जो गोपगण थे उन्होंने वो चामर उठा लिया, वो जला हुआ दिया, घी लैंप दीप प्रदीप लिया और कृष्ण की आरती उतार रहे ऐसे करके, वो चामर ढुला रहे उसको ऐसे, और देवता देख रहे हैं आइटम, अरे ये सब ऑफर हो गया आइटम, अनऑफर्ड आइटम नहीं है ये, ऑफर्ड है करके ऐसे, और कृष्ण इतना स्मित दे रहे, इतना प्रसन्न हो रहे करके ऐसे। कवि कर्णपुर लिखते हैं, जितनी प्रसन्नता कृष्ण को उस देवताओं के सागर संगीत वाले अभिषेक से हुई नहीं, उसके अगणित परिमाण से ज्यादा प्रसन्नता कृष्ण को ये ब्रजवासियों के उस आरती से हुई, जो कर रहे हैं ना पटे पुटे आइटम्स के द्वारा ऐसे, तो ये प्रेम है करके ऐसे, तो ये ब्रजवासियों का प्रेम है एकदम। शिवजी बोले कि एक्चुअली ये देखो कृष्ण, शंकर बोले जाते हुए, ये सब देवताओं के साथ शंकर भी थे, शंकर बोले ये व्रजवासियों का प्रेम है, हम लोगों ने इतना सब ऐश्वर्य भाव में सब कुछ किया लेकिन कृष्ण कैसे इन व्रजवासियों से प्रसन्न है, देखो ऐसे प्रेमी व्रजवासियों को इस इंद्र ने, फिर से जाते हुए, ऐसे प्रेमी व्रजवासियों पे इस इंद्र ने आक्रमण किया, उनको खत्म करने की कोशिश की, तो भी इस कृष्ण का उनके ऊपर कृपा देखो, उन्होंने कहा इस कृपा को बोलने के लिए, अरे पहले इसको सुन के हृदय द्रवित हो जाएगा तो वाणी से क्या आएगा, वाणी से कुछ आ ही नहीं सकता, हृदय ही द्रवित हो जाएगा, धन्य है बोले ये ब्रजवासी गण, हम लोग बस इनको दंडवत कर सकते और इनको नमस्कार कर सकते, ऐसे उनके चरणों में नमस्कार करके ये सारे देवता वगैरह जो है वो वापिस चले गए, और फिर व्रज के ये सारे गोपगण आदि वो भी कृष्ण के साथ में व्रज में वापिस आए। फिर यहाँ पे आने के पश्चात उन्होंने नंद बाबा को वगैरह कई दिनों तक कथा सुनाई क्या चल रहा था उधर करके ऐसे, नंद बाबा बोले ऐसे हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, ये सब वगैरह इस प्रकार से, तो वो भी बहुत विस्तृत विश्लेषण हुआ है। तो इस प्रकार से ये हम लोग देख सकते हैं कि कैसा व्रज भक्ति का महिमा जो है दिखाई पड़ता है। शिल प्रभुपाद ने हमें यह दिया है, मैंने प्रारंभ भी शिल प्रभुपाद की कृपा से किया और अंत भी करूंगा कि शिल प्रभुपाद ने यह व्रज भक्ति हमें प्रदान की है, शिल प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों के द्वारा अपनी शिक्षाओं के द्वारा इस वैधि भक्ति को और इस व्रज भक्ति को हमें प्रदान किया हुआ है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि द रोड टू वृंदावन गोज वाया कुरुक्षेत्र, रोड टू वृंदावन गोज वाया कुरुक्षेत्र, तो जब तक हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को समझेंगे नहीं, भगवद गीता की शिक्षाओं को समझेंगे नहीं, भागवत की शिक्षाओं उनका अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, तब तक व्रज भक्ति को समझ नहीं पाएंगे, और उसका एकदम परफेक्टली अच्छे से पालन करते हुए अगर इस व्रज भक्ति की आकांक्षा रखेंगे तो फिर हमें एक दिन निश्चित ही इसका भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, कृष्ण की कृपा से कभी तो एक तो बूंद जो है, कण जो है इसका प्राप्त हो सकता है। तो अंत में प्रार्थना करेंगे गोवर्धन को, ये बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है खास करके हमारे संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु जब भी वृंदावन गए तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को ये प्रार्थना कही, और ये प्रार्थना में हरिदास वर्य जो शब्द है वो श्रीमती राधारानी को बहुत पसंद है, तो इसलिए हमारी परम आराध्या श्रीमती राधारानी हरिदास वर्य ऐसे गोवर्धन को बहुत पुकार के उनका गुणगान करती है और उनका उनकी लीला में ये बहुत प्रकर्षता से दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रार्थना को बोल के आज यहाँ पे विराम देंगे, आप सब बोलिए, हंता यमद्रिर अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंद मूलये। तो ये हरिदास वर्य कहा है, सारे हरिदासों में भगवान के सारे सेवकों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो, ऐसा ये जो है गिरिराज है जो हमेशा राम कृष्ण श्री बलराम और कृष्ण के चरण स्पर्श से हमेशा प्रफुल्लित रहता है, प्रमोदित रहता है, और इतना वो भगवान को सम्मान देता है, कैसे सारे भगवान के प्रेमियों के लिए, गौओं के लिए, सारे भगवान के सखाओं के लिए सुंदर जल या फिर घास या फिर कंदर यानी गुफाएं, कंदमूले कंदमूल फल आदि, बाकी अन्य अन्य रत्न आदि और आसन वगैरह, ये सब इतने प्रकार से एक्चुअली हर प्रकार से गोवर्धन जो है भगवान के पार्षदों की सेवा करता है, तो इसलिए श्रीमती राधारानी इन्हें हरिदास वर्य कहती है। और ऐसे इन हरिदास वर्य जो है इनका हमारे जीवन में जो हम लोग देखते हैं कि परिचय हुआ है और उनकी गुणगान सुनने की अवधि जो है अवसर जो है हमें प्राप्त हुआ है, तो इसलिए आज के दिन प्रार्थना करेंगे कि इन गोवर्धन गिरिराज की हमारे ऊपर भी कृपा होगी और हमारे भी जो अनर्थ है एकदम उन अनर्थों को वो चूर चूर कर दे और साथ ही साथ कुछ कृष्ण के चरणों में, श्रीमती राधारानी के चरणों में और सारे वृंदावन धाम के चरण में हमें भी कुछ भक्ति प्रदान करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज गोवर्धन की
जय।
श्री श्री कृष्ण भगवान की
जय।
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की
जय।
गोवर्धन पूजा महामहोत्सव के
जय।
श्रील प्रभुपाद के
जय।
निताय गौर प्रेमानंदे
हरि हरि वो
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण कन्हाई कृष्ण प्रभु की। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर हमें गिरिराज गोवर्धन का वर्णन किया, इनके लिए तीन बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब बैठ जाइए, एक मिनट का ही अनाउंसमेंट है आज, बाकी सब सवेरे हो गया है। तो प्रभु जी ने जैसे बताया गिरिराज, तो व्रज मंडल 84 कोस की एक परिक्रमा चल रही है जो गए 35 साल से चलती है, और आज वो परिक्रमा गिरिराज में ही है और वहां परिक्रमा कर ही रही है। तो उस परिक्रमा का सब वर्णन इस किताब में है, ब्रज मंडल दर्शन। इसमें 30 दिन यह परिक्रमा कैसे चलती है, एक एक दिन का वर्णन रंगीन चित्रों के साथ बहुत ही सुंदर है। तो ये 450 का किताब सिर्फ आज ही के दिन खास गोवर्धन पूजा के निमित्त सिर्फ 200 रुपए में दिया जा रहा है। तो कृपा करके ऊपर से आप ये ले सकते हैं। यदि आपके पास है तो ये दिवाली में किसी को गिफ्ट देने के लिए भी ले सकते हैं। ये बहुत ही स्पेशल किताब है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने इसको बड़े ही अपने हृदय से इसको लिखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप व्रज का और भी आनंद प्राप्त करेंगे। जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो व्रज, व्रज धाम, व्रज दर्शन, तो ये व्रज का दर्शन आपको प्राप्त होगा। तो साथ में ही 56 भोग का सुंदर दर्शन है, आरती है, और एक मंत्र बोलेंगे गिरिराज का और फिर हम ऊपर जाएंगे। अभी मैं पूर्णिमा के दिन परिक्रमा करके आया तो वह हमारे असीम कृष्ण प्रभु थे, उन्होंने हमें एक मंत्र सिखाया, तो आपको भी हमारे साथ बोलना है, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। ते गोवर्धन हमें परमानंद प्रदान करेगा, तो आप ऊपर दर्शन करके और प्रसाद लेके और साथ में ये किताब लेके परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।